ओम शांति। अभी इस सिक्स्थ सर कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन रिट्रीट के वैलिडिटी सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वैलिडिटी सेशन का बहुत सुंदर टॉपिक है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हार्बिंगर्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कैसे हम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को समन्वय कराते हुए, कैसे दोनों को कंबाइन जब हम करते हैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हम एक नया रास्ता बनाते हैं, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम बना सकते हैं, इसके बारे में अपना वक्तव्य, अपना विचार रखने के लिए बहुत अनुभवी वक्ताएं हैं। उन सभी से मैं निवेदन करती हूं मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्री रवि कुमार गुप्ता जी, डायरेक्टर ऑफ आरडीओ दिल्ली, श्री आरसी रायना जी, सीओओ ऑफ दिशा टीवी दिल्ली, आदरणीय डॉक्टर जनार्दा जी, हेड एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ एलडब्ल्यूईआरपी आईसीएआर आरसीएआर पटना, आदरणीय आरसी लामिछानी जी, एसीओआरएबी नेपाल, परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी अंबिका बहन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ पार्क विंग, परमादरणीय रमेश भाई जी भी हमारे समक्ष थोड़े ही समय में उपस्थित हो जाएंगे, और आदरणीय जैन दीदी जी भी थोड़े समय में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर सार जी से भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस सत्र को आरंभ करने से पहले हम दो मिनट प्रभु स्मृति में बैठते हैं। और उससे पहले मैं अनुरोध करती हूं ब्रह्म कुमार अनुरूप मराठे जी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी हम प्रभु स्मृति में बैठते हैं और सरोजिनी बहन से हम निवेदन करते हैं प्रभु स्मृति के बहुत सुंदर गीत हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम जब हम अपने आप को प्रभु अर्पण करते हैं तो कैसे परमात्मा हमारे अंदर सब प्रकार की शक्तियां और गुणों से भरपूर करते हैं, और हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए एक नई दिशा प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर गीत के द्वारा हम सुनेंगे सरोजिनी बहन से। बहुत सुंदर सरोजनी बहन, बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया कि जब हम परमात्मा को अर्पण करते हैं सब कुछ, तो हमारा जीवन एक दर्पण बन जाता है, जिस दर्पण के द्वारा न केवल अपने आप को देख सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए भी हम एक बहुत सुंदर एक आईना बन जाते हैं, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी ब्रह्म कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ मंच पर विराजित अपने मेहमानों का स्वागत बोकेस और बैजेस के द्वारा करेंगे। सभा में बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि जो पीछे पीछे बैठे हैं सभी से निवेदन है कि आगे आ जाएंगे। बहुत पीछे जो बैठे हैं आपसे नम्र निवेदन है कि आगे आ जाएं। एक अच्छा फीलिंग रहता है जब नजदीक रहते हैं, तो बहुत दूर दूर तो दूरियां बढ़ जाती हैं। तो आइए नजदीक आइए। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ कुमारी शैलजा से। बहुत सुंदर एक स्वागत नृत्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें कुमारी शैलजा, जो मध्य प्रदेश सतना से आए हुए हैं। बहुत सुंदर कुमारी शैलजा। आप सभी त्रिदिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है बहुत आनंद लिया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। तो इसके बारे में, इस प्रोसीडिंग्स के, कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग्स के बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करने जा रही हूं ब्रह्म कुमार अनुरूप मराठे जी, जो जोनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पार्क है फ्रॉम महाराष्ट्र। आप पिछले 38 इयर्स से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही सीनियर राजयोगी है और बहुत प्रकार के मेडिटेशन में एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर रहे हैं स्पार्क के साथ जुड़ करके। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपके कार्यक्षेत्र इसमें एक अवधि में आप सीनियर टाउन प्लानर रहे चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ आप सभी जानते हैं कितना वेल प्लान्ड सिटी है, आपके इसका श्रेय आपके आपको जाता है। सीनियर टाउन प्लानर के रूप में आप वहां सेवा दी और उसके साथ साथ ओमान में, सुल्तनेट ऑफ ओमान में भी आप टाउन प्लानर के रूप में वहां कार्यान्वित रहे और फिजी में भी टाउन प्लानर के रूप में वहां कार्यान्वित रहे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे राज्यों का सेंटर खोलने के लिए भी फिजी में आप निमित्त बने, आपका सह परिवार इस ज्ञान में जुड़े हुए हैं। आप सरोजिनी बहन को देखा, आप उनके युगल हैं और अभी मैं ऐसे अनुभवी आत्मा से मैं अनुरोध करने जा रही हूँ ब्रह्म कुमार अनुरूप मराठे जी इस कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएं।
ओम शांति। धन्यवाद सुमन बहन जी, मंच पर उपस्थित रवि कुमार गुप्ता जी, आरसी रैना जी, जनार्दन जी, लमी चाने जी, अंबिका दीदी जी, आरसी रैना जी और सभा में उपस्थित कॉन्फ्रेंस के लिए आए सभी डेलीगेट्स, आपके सन्मुख चार पांच दिन से हमारा जो कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग्स रखने का कार्य मेरे जिम्मे आया है। कार्य बड़ा है और समय बहुत कम है, तो मैं जरा नए ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा परिचय देते हुए सुमन बेजी ने टाउन प्लानिंग का जिक्र किया था, मुझे शौक है कुछ चीजें कंसीव करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। तो चार पांच दिन की ये कॉन्फ्रेंस बहुत सुंदर ढंग से कंसीव की थी, इम्प्लीमेंटेशन इसका पूरा हुआ, अब उसको रिव्यू करने का टाइम आया है। तो जरा आप स्क्रीन पर देखते जाइए, इस कॉन्फ्रेंस को विजुलाइज किया गया है दो तरीके से। एक ये टेंपल के रूप में आप विजुलाइज करो, इसका कंट्रोल यहां है। एक टेम्पल के रूप में है, टेम्पल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, अप्रोच टू फॉस्टरिंग रिसर्च टू बिल्ड वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, ये था हमारा थीम। हर एक टेम्पल का फाउंडेशन होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर डेकोरेशन इनग्रेविंग्स की जाती है, ऊपर कलश होता है और अंदर मूर्ति होती है पूजा के लिए, तो इस कॉन्फ्रेंस को कैसे व्यू करना है आप देखिए। इसका फाउंडेशन पहले ही दिन डाला कॉन्फ्रेंस का आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी और मोहिनी बहन जी ने। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का जो है एसेंस वो आपके सामने रखा था, वो स्ट्रांग फाउंडेशन बना। उसके बाद इस मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर की बात बताई आदरणीय रमेश भाई जी, अंबिका दीरी जी और सुशील चंद्र भाई जी ने। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होने वाला है वो पूरी बात आपको बताई थी। उसके बाद उसके ऊपर तीन चार दिन डेकोरेशन और एनग्रेविंग्स होते रहे। इसका फॉर्म ये था कि पार्टिसिपेंट में से जो डिलीगेट्स थे उनके विचार और राजयोगी के स्पिरिचुअलिटी के बारे में विचार, उसका आपस में लेन देन हुआ और मुन्नी बहन जी ने उसके ऊपर कलश चढ़ाया। और अंदर जो डीटी है वो कौन है, तो आप सभी डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं और उनको मार्गदर्शन करने के लिए मेडिटेशन सेशंस में आपने शीलू बहन जी को सुना, उषा बहन जी को सुना, गीता बहन जी को सुना। इस कॉन्फ्रेंस को दूसरे ढंग से हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये रमेश भाई जी ने खोला हुआ ये मेगा मॉल था। इस मॉल में आपको सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिला? नए नए कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, थ्योरीज, अप्रोचेस, एक्सपीरियंसेस, एप्लीकेशंस, स्पीचेस के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा, डांसेस के द्वारा, इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस, मेडिटेशन कंसर्ट्स, पेपर प्रेजेंटेशन, स्पार्क विंग की एक्टिविटीज और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि DRDO, AIIMS, इनके द्वारा जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं वो सारी बातें आपके सामने रखी गई। इसमें से आइडिया ये है कि डेलीगेट्स इसमें कंफ्यूज ना हो, जिसको जो माल चाहिए जो पसंद आए वो लेकर जाए और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करे। इस्तेमाल किस प्रकार करना है वो एक प्रकार का एक्शन प्लान आज हमारे सम्मुख आदरणीय अंबिका दीदी जी रखेंगे, तो उसको आप आगे चलाएंगे। जो इस मंदिर की बात मैं बता रहा था, इसका डेकोरेशन किस प्रकार का कैसे हुआ, अलग अलग सेशंस इसमें ऑर्गेनाइज किए गए थे, इंटरेक्शन बिटवीन डेलीगेट्स एंड राजयोगी इसमें हुआ, सेशंस के नाम बहुत सुंदर थे, टॉपिक्स भी अच्छे कवर हुए थे, हार्नेसिंग इनर पावर्स, वैल्यूज इन रिसर्च, रिसर्च इंटीग्रेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, स्केलिंग इनर माउंटेन्स, साइंस ऑफ न्यूरो लीडरशिप, स्पिरिचुअल साइंस, उसके पीछे फिलोसॉफी क्या है वो भी बात बताई गई थी। फिर रिसर्चर इज ए एजेंट फॉर चेंज, चेंज एजेंट, इस प्रकार की भी विजुलाइज कर सकते हैं। फिर 10 के करीब पेपर प्रेजेंटेशन हुए। जो रिसर्चर्स एक्चुअली काम करते हैं उन्होंने वो रिसर्च प्रेजेंटेशन के द्वारा अपने आइडियाज सबके सामने रखे थे और एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायमंड हॉल में प्रस्तुत किया गया। आज भी वो खुला है, जिनको भी इंटरेस्ट है अवश्य देखे, बहुत सुंदर एग्जीबिशन है। इसमें आपके भी आइडियाज आएंगे तो अगले साल हम और अच्छे एग्जीबिशन प्रस्तुत कर सकेंगे। मंदिर की बात चल रही तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उनको कैसे बनाया जाता है उसकी विधि अलग अलग मेडिटेशन सेशंस के द्वारा की गई थी। अब किसी भी मंदिर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसके अंदर की डीटीज। आप सभी डेलीगेट्स ऐसे डीटीज हो आपके अंदर वो डिवाइन वर्च्यूज आए, आपके अंदर वो नए आपके जो पोटेंशियल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए आप बढ़े, इसके लिए तीन मुख्य टॉपिक्स चुने गए थे। एक था डिस्कवरिंग ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, दूसरा था अवेयरनेस ऑफ सुप्रीम बीइंग, और तीसरा था प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन। एक सेशन कल शाम को हुआ था, आपने सभी ने इसको एंजॉय किया है। आदरणीय शीलू दीदी ने सारी यज्ञ की हिस्ट्री, खास करके फाउंडर ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री के बारे में अपने अनुभव युक्त बोल आपके सामने रखे थे। अब जो कॉन्फ्रेंस चली उसके मुख्य कुछ कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इनॉर्गल सेशन में अंबिका दीदी ने एक बहुत अच्छा होप सबके सामने रखा था। शी सेड शी होप दैट एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस द डेलीगेट्स वुड कॉन्टेम्पलेट एंड इनकल्केट स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ सो दैट द साइंस कुड प्ले ए वाइटल रोल टुगेदर विद स्पिरिचुअलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। She particularly defined Rajyoga as an art of mastering the self. सुशील चंद्र भाई जी ने स्पार के बारे में विशेष जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि दैट द स्पार्क वॉज सर्विंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस, एजुकेशन, हेल्थ, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज एटसेट्रा। दीज प्रोजेक्ट्स आर बींग टेकन विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक DRDO, दिल्ली, निमहांस बंगलोर, AIIMS दिल्ली, ISIC दिल्ली एंड किडवाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बेंगलोर एटसेट्रा। हमारे चेयरपर्सन आदरणीय रमेश भाई जी, उन्होंने सारे कॉन्फ्रेंस की मुख्य बात जो थी सबके सामने रखी थी। उन्होंने कहा दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वेयर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उन्होंने ये भी कहा दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैव टू कम टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन in the lives of people. He said that the institution was utilizing science for reaching the masses in pursuit of imparting spirituality through Peace of Mind TV channel, through its own Goldiwood studio. He also hoped that the delegates would join hands with Brahma Kumaris to bring out a revolution and appeal to them to record their views and suggestions in the feedback form, which would go a long way in improving lifestyle. ये feedback form आज आपने यहाँ पर भर के अगर नहीं दिए है तो भर के देने हैं, उसके लिए भी time program में रखा हुआ है। सबसे बढ़िया बात उन्होंने कही कि स्पार को अभी केवल स्पार्क जैसे ना रखा जाए, उसको फ्लेम की तरह बड़ा करना है और सारे विश्व का कल्याण करने के लिए इसका कार्य आगे बढ़े, उसमें रिसर्चर्स अपना रोल अदा करें। इस प्रकार उन्होंने बड़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातें बताई थी। इस टेंपल के ऊपर जो कलश रखा था हमारी आदरणीय मुन्नी बहन जी ने, बहुत सुंदर छोटी छोटी बातें बताकर उन्होंने कहा था कि हमने याद रखना है कि आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी कैसे सिखाती थी। मुझे खुद दादी के साथ अनुभव करने का चांस मिला है। छोटी छोटी बातों में दादी आगे बढ़ाती थी, तो उनका पहले ये प्रिंसिपल था टू बेयर इन माइंड दैट आई एम ए ट्रस्टी, दूसरा था बी कंस्ट्रक्टिव, गिव रिगार्ड टू एवरीवन वेदर बिग और स्मॉल एंड मेंटेन सेल्फ एस्टीम, तीसरी बात थी वर्ड्स एमिनेटिंग शुड बी स्वीट, लेस, लो पिच एंड वेल थॉट आफ्टर. शी समड अप बाय सेइंग दैट वन शुड ऑलवेज लुक फॉर स्पेशलिटीज इन अदर्स रादर देन लुकिंग एट देयर शॉर्टकमिंग्स. हमारे मुख्य अतिथि उस सेशन में थे अरुण यादव जी, प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी फ्रॉम भोपाल. ही फेल्ट दैट साइंस शुड एम एट यील्डिंग कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स. इसी सेशन में डॉक्टर माहेश्वर शेरॉन, मैनेजिंग डायरेक्टर नैनो टेक्नोलॉजी मुंबई के, उन्होंने बताया था. ही सेड दैट ही हैड विजिटेड ए नंबर ऑफ प्लेसेस बट फाउंड दैट हियर सर्विस वॉज बींग डिस्चार्ज विथ डेडिकेशन. उनको शब्द यूज किया था उन्होंने भावना. फाउंडेशन डालते हुए कॉन्फ्रेंस का मोहिनी बहन ने बहुत अच्छी बात बताई थी. शी टुक द ऑडियंस बाय ए सेशन ऑफ डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस. She took the audience on a journey to silence world, from the world ridden with physical actions, and made them experience peace through internal silence by means of brief guided meditation. I am sure that that experience the delegates will carry from here, and that will be the foundation for their progress for the whole life. Then our additional head, Dadi Ratan Mohini ji, she blessed the delegates and emphasized the need to realize the self, and by being in that consciousness we will receive cooperation from all. God through his teachings is transforming human beings into deities, and detailed knowledge of which would be shared during early morning sessions. She felt certain that after the end of Kali Yuga, Bharat will become heaven, and those who wish to go to heaven have to practice Rajyoga, which means reminding oneself as a soul and a child of the Supreme Soul. This way, the inaugural session was over. Detailed deliberations and other sessions followed, which I got detailed report about that. You will get the copies of these also, but judging from the time at my disposal, I consider it to stop at this point. I wish you all a very happy stay, and when you go back, look forward to your continued association with this organization. Thank you. Om Shanti.
थैंक यू वेरी मच ब्रह्मा कुमार अनुरूप मराठे जी. ने बहुत सुंदर रूप से पूरा प्रोसीडिंग्स बताया कि कैसे हम अलग अलग मैसेजेस सुने और अपने जीवन के लिए एक मैसेज लेके जा रहे हैं. जब हम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को एक साथ करते हैं या स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव हम अपने जीवन में ला सकते हैं. किसी ने खूब ये कहा है कि नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस. नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम. Mastering others is strength and mastering the self is true power. तो हम true power को achieve करें, true wisdom को हम achieve करें, यही message हम इस conference से लेके जाएं। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय श्री रवि कुमार गुप्ता जी, who is a scientist जी और the director of Directorate of Public Interface, DRDO, Headquarters, Delhi, most respected Shri Ravi Kumar Gupta ji.
Om Shanti. Manch pe baithe sabhi mahanubhav. Is karyakram ko dekhne wale aur sunne wale sabhi shrotagan. भाइयों बहनों और मित्रों एंड माय वाइफ कोस धर्म पत्नी आप सभी को मेरा नमन. मैं आपके बहुमूल्य समय से कुछ क्षण साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इस कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा. किंतु उससे पहले मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया और आप सबके समक्ष आकर अपने विचार रखने का एक अवसर प्रदान किया है. और साथ ही भाई दिनेश कुमार जी जिनके सौजन्य से मुझे यहां आने का मौका मिला है. हम अपने आसपास देखते हैं कि आज के युग में अगर इस युग को हाई टेक्नोलॉजी का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इससे पहले कि हम किसी एक तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ नया आ जाता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वाहन हो, जब तक हम एक गजट से एक चीज से अवगत होने की चेष्टा कर रहे होते हैं कुछ नया मॉडल, कुछ नई चीजें सामने आ चुकी होती हैं. आज हमारे पास मकान हैं रहने के लिए, तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं. ये सभी विज्ञान की देन है और इनसे इन्होंने हमारे जीवन शैली को एक बहुत ही एक मोड़ दिया है. ये मोड़ किधर लेके जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है हमें, वेयर आर वी गोइंग, ये एक देखने का विषय है, सोचने का विषय है. आज हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन हैं. हमें याद है अपने जब हम छोटे थे तो कहीं किसी दूर शहर में अगर किसी से बात करनी हो तो या तो एसटीडी कॉल बुक करनी पड़ती थी, घंटों इंतजार करना होता था कि कब कॉल मिलेगी. आज हमारी जेब में मोबाइल फोन होता है, हम पूरे विश्व में कहीं बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर पाते हैं. कुछ सामान खरीदना हो जो अपने आसपास दुकानों पर उपलब्ध ना हो तो हम इंतजार करते थे कोई मेला लगेगा तो वहां जाएंगे और तरह तरह के लोग वहां पे आएंगे और सामान हम खरीदेंगे. आज सप्लाई चेन बगल में जाते हैं एक मॉल में और दुनिया के किसी भी कोने का सामान हमारे लिए मौजूद रहता है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ क्षणों में ही हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं. आज मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, खाने के लिए हमारे किसानों के पास नई टेक्निक्स हैं, उत्पादन बढ़ रहा है एंड और बहुत कुछ है जो आज हम कह सकते हैं कि विज्ञान की देन है, विज्ञान के कारण हमें मिल रहा है. लेकिन क्या ये सब हमें ये चीज कहां ले जा रही है, इसके लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं, व्हाट इज द प्राइस वी आर पेइंग फॉर दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा इसके लिए. मेडिकल और एजुकेशन अपने आप में है हमारे भारतवर्ष में ये एक नोबल प्रोफेशन के रूप में हमेशा से रहे हैं. एक समय था कि एक गांव में हर गांव में एक वैद्य होते थे. कोई बीमार पड़ता है उनके पास जाएगा, उन्होंने नर्स देखा और अपने पास से कोई दवाई निकाल के दी और आप निश्चिंत हैं कि आप ठीक हो जाएंगे और घर वापस आ गए. क्या आज के युग में ऐसा कुछ होगा है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, 2010 में फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था विज्ञान भवन में। माननीय प्रधानमंत्री वहां पे आए थे और उन्होंने कुछ जाने माने ब्यूरोक्रेट्स को उनके अति विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था और उन सम्मानित व्यक्तियों में से कुछ ने अपने अनुभव वहां शेयर किए थे। पूरा विज्ञान भवन खचाखच भरा हुआ था, कोई भी चैनल टीवी का, कोई भी प्रेस ऐसा नहीं था जो वहां मौजूद ना हो। उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि राजस्थान के एक कस्बे में किस तरह से उन्होंने देखा कि लोग मर रहे हैं। बीमारियां तो होती हैं, लेकिन मरने का कारण था कि उनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दवाइयां इतनी महंगी थीं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पता लगाया जाए कि क्या कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जो कि एसेंशियल हैं, व्हाट आर द एसेंशियल मेडिसिन्स। और उस स्टडी से उनको मालूम पड़ा कि मुश्किल से करीब 150 मेडिसिन्स हैं जो एक्सेप्शनली एसेंशियल हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एंड कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 600 मेडिसिन से ज्यादा नहीं है जो कि एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में आती है। तो उन्होंने उसके लिए एक टेंडर इन्वाइट किया, जो कंपनी बनाने वाली है उनसे भी मंगाया, और जो रिजल्ट थे उनको उन्होंने उस सभा में प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत किया। मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा। एक बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है सेट्रिजिन, मार्केट में 40 रुपए से 42 रुपए के बीच में मिलती है, और उस टेंडर में उनके लिए 10 रुपए उसका 10 गोलियों का पत्ता सिर्फ 12 रुपए का था। एक एंटी कैंसर मेडिसिन थी जो मार्केट में करीब 1.5 लाख रुपए की एक डोज आती है, और उस टेंडर में उसकी कीमत 13,000 से लेके और 32,000 के बीच में आई। ये क्या संदेश मिलता है इससे? और मुझे लगा था कि शायद ये सारा मीडिया इसको देख रहा है और अगले दिन तहलका मच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी अखबार में, किसी टीवी में इसका जिक्र तक नहीं आया। अब ये क्या है, ये अब हमारे को विचार करने की बात है। इसी प्रकार एक हमारे मित्र थे, हमारे बुजुर्ग, एक दिल्ली के नजदीक एक शहर में के जाने माने वकील थे ये। उनको बुखार हो गया और बुखार कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। जो लोकल डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो ये स्वाइन फ्लू लगता है, लेकिन बेहतर होगा कि लाइफ सपोर्ट सर्विसेज दिल्ली में अच्छी मिलेंगी, आप किसी बड़े अस्पताल में उनको ले जाए। पैसे की कमी नहीं थी, वो दिल्ली ले आए और एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल, बहुत बड़े एक हॉस्पिटल में उनको उन्होंने एडमिट करा दिया। अगले 15 दिन तक शायद कोई टेस्ट ऐसा नहीं बचा था जो उनके लिए ना किया गया हो। बुखार तो 2 दिन में कम आ गया, लेकिन तकरीबन 15 लाख रुपए का उनका बिल बनने के बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और जब उनको डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से तो उनके पूरे शरीर पर बेड्स हो चुके थे। अंत में अपने घर आके उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो ये सब क्या है? क्या ये एक नोबल प्रोफेशन है या कुछ और है? इसी प्रकार दूसरा एक प्रोफेशन है एजुकेशन का। हम क्या करते हैं अपने बच्चों को, हम क्या देते हैं? रिपेयर टू द नोट्स टू ट्रांसफॉर्म द चाइल्ड इनटू एन इन्फॉर्म्ड पर्सन। मैंने जानबूझ के शब्द इन्फॉर्म का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो एजुकेशन है। बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ वो अपने अंदर छुपे हुए बच्चे को कहीं दूर छोड़ चुका होता है, क्योंकि क्लास से, नर्सरी क्लास से, केजी क्लास से उनको सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है। सिर्फ ये कहा जाता है कि जो आपको बताया जा रहा है चुपचाप उसको आप रट लीजिए और एक इन्फॉर्म सिटीजन बन जाइए। तो हम देखते हैं कि समस्याएं पुरानी और नई, क्या ये विज्ञान की देन हमारी इन समस्याओं से हमें कुछ छुटकारा दिला पाई है या कुछ नई समस्याएं इसने खड़ी कर दी हैं? क्या हम इन सबसे प्रसन्न हैं? आज का युवा हम अक्सर सुनते हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट अपने हॉस्टल में अपने आप को फांसी लगा के उसने अपना हाथ अंदर लिया। समाज में तरह तरह के क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, वुमेन के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट। आज किसी भी बड़े शहर में सबसे असुरक्षित अगर कोई है तो वो है हमारी नारियां, बच्चे और बुजुर्ग। आए दिन देखते हैं कि किसी शहर में उनके नौकर ने अकाउंट के मार दिया, पैसा छीन के भाग गया। तरह तरह के क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। पति पत्नी का संबंध, आपस में झगड़े, आपस में लड़ाइयां, मैरिटल डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स। करप्शन की बात करें तो आप सब जानते हैं पिछले कुछ सालों में करप्शन की सारी सीमाएं पार हो गई। तो क्या साइंस हमें कुछ इसमें से दे सकती है? क्या गलती साइंस की है या कहीं कुछ और है? प्रश्न है कि क्या साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब अच्छा है या बुरा है? मेरा ऐसा मानना है कि विज्ञान अपने आप में एक टूल है, एक मींस है कुछ अचीव करने के लिए। क्या हमें अचीव करना है या हमें देखना है? काफी समय पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक हमारे मित्र थे यंग, उनको पता लगा किडनी में स्टोन हो गया। किडनी का एक्सरे से मालूम तो पड़ गया कि स्टोन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन करने से पहले उसकी ठीक स्थिति का जांच करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आपका एक टेस्ट होता था जिसमें एक डाई इंजेक्ट की जाती थी और उसके बाद एक्सरे लेने से बिल्कुल सही एक अच्छी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर सामने आती थी। लेकिन मालूम पड़ा कि उस डाई से उनको एलर्जी है, अगर वो दी गई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। न्यूक्लियर साइंस उनकी बचाव के लिए आई। एक न्यूक्लियर आइसोटोप उनके शरीर में इंजेक्ट किया गया और न्यूक्लियर स्कैनिंग के द्वारा उनके स्टोन की सही स्थिति का जायजा लग पाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी आज हमारे किसी भी देश के लिए उचित ऊर्जा का उत्पादन होना अति आवश्यक है। कल हमने देखा कि यहां पे इसी माउंट आबू में हमारे इस विश्वविद्यालय के नजदीक एक बहुत बड़े सौर ऊर्जा प्लांट को लगाया गया है। बहुत खुशी हुई मुझे देख करके कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस प्रकार समाज के आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना वातावरण को हानि पहुंचाए हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम समूचे देश की बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि सोलर एनर्जी कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन ए बिग मैनर। बट अगर हम आज क्लीन एनर्जी की बात करें तो शायद न्यूक्लियर एनर्जी के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। किंतु यही न्यूक्लियर एनर्जी सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एक कहर बन के बरस पड़ी थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रूप में, जिसने सारे विश्व को हिला के रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि टेक्नोलॉजी हमें कहां लेके जाएगी। आज हमारे देश में भी, हमारे पास भी यह हथियार है। हमारा यह निर्णय है, हमारे देश का एज ए पॉलिसी, कि हम कभी इनको इस्तेमाल करने वाले पहले देश नहीं होंगे। वी विल नेवर बी द फर्स्ट पर्सन टू यूज इट। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है, कोई हमारे अगेंस्ट यदि इन हथियारों का उपयोग करता है, तो फिर हम पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हम भारत में इन देश हथियारों को वेपन्स ऑफ पीस का नाम देते हैं, क्योंकि इनके चलते उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे अगेंस्ट, इन हथियारों को हमारी जनता के अगेंस्ट कभी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो निष्कर्ष ये है कि चीज वही है, टेक्नोलॉजी वही है, हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये हमारे ऊपर है। साइंस इज ए टूल, इट इज ए मीन्स टू अचीव, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अब देखना यह है कि जिस व्यक्ति ने हिरोशिमा और नागासाकी को बॉम्ब करने का आदेश दिया था, यदि वह स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता, यदि वह एक क्षण के लिए रुक के सोचता कि इसका नतीजा क्या होगा, कितने लाखों लोग कुछ पल भर में ही भाप बन के उड़ जाएंगे और आने वाली कई नस्लें तरह तरह के विकारों से सफर करती रहेंगी तो शायद वो ऐसा नहीं करता। इसी प्रकार जिस डॉक्टर ने या डॉक्टर के समूह ने उस पेशेंट को गलत दवाइयां देकर बेकार के टेस्ट करा के 15 दिन तक उसके लिए जिंदगी को और नरक बना के रखा और अंत में उनकी मृत्यु हुई, यदि वह व्यक्ति एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन होता तो शायद ऐसा नहीं करता। वो उस बात सोचता कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा मेडिकल प्रोफेशन है और मेरा काम जीवन देना है न कि पैसा बनाना। इसी प्रकार एक 5 रुपए की दवाई को 500 रुपए में बेचने वाले व्यक्ति शायद ऐसा नहीं करते। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? मेरे विचार, ये मेरे अपने विचार हैं, मैं पता नहीं मैं अब यहां बैठे उपस्थित लोग कितना सहमत होंगे इनसे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है कि जिस पर घंटों चर्चा की जा सकती है। इन नटशेल में कहना चाहूंगा, जैसा मैं समझता हूं, स्पिरिचुअलिटी इज अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, अपने आप को समझने का एक रास्ता है, एक मीन्स है, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स अराउंड अस। आज किसी एक व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, हम सब इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। तो हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं, जो हमारी आसपास प्रकृति है एंड प्रकृति के भी आगे, उस सब को समझने का एक रास्ता है स्पिरिचुअलिटी। और हमारा क्या संबंध है इन लोगों से, हमारे आसपास के यूनिवर्स से, उसको समझने का एक जरिया है। हाउ डू वी कनेक्ट टू द यूनिवर्स। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल के हम एक वैल्यू सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमें हमारे वातावरण, हमारे ब्रह्मांड सबसे हार्मनी के साथ, सामंजस्य के साथ रहना सिखा सकता है हमें। मैं समझता हूं स्पिरिचुअलिटी इज एक लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ फ्री विल। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, द एसेंशियलिटी ऑफ फ्री विल, जो कि हमारे शास्त्रों में भी हमेशा से इस बात पे एक अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है इसको। व्यक्ति जो कुछ काम करता है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, ना उसको बताने वाला, ना उसका रास्ता दिखाने वाला, ना उसको गाइड या मिसगाइड करने वाला। तो जब व्यक्ति को का भाग्य उसका अपना कर्म है तो उसको अपना कर्म अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपना रास्ता खुद बनाते हुए, ढूंढते हुए करने की स्वतंत्रता होना अति आवश्यक है। हमारे देश में ये प्रथा थी हमेशा कि इस प्रकार के किसी भी हमें क्या करना है, क्या रास्ता अपनाना है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो हमेशा एक वातावरण बदलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, हर समय के साथ साथ परिवेश बदलते रहेंगे। हो सकता है जो चीज एक समय में उचित हो दूसरे समय में आके अनुचित हो जाए, या कुछ कुछ मायने में अनुचित हो जाए, कुछ मायने में उचित रह जाए। तो क्या सही है, क्या गलत है, इसके लिए वाद विवाद, ओपन डिस्कशन, जहां हर व्यक्ति अपने विचार स्वतंत्र रूप से बिना किसी डर के रख सके, उस पर चर्चा की जा सके। शास्त्रों में जिक्र आता है आदि शंकराचार्य पूरे भारत भ्रमण करके उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी। उन सभाओं में हर व्यक्ति को, चाहे वो नर हो या नारी, मंगल मिश्र उनकी पत्नी का उदाहरण आता है, किस तरह से उन्होंने उस वाद विवाद में, और लगा कि एक बार शायद आदि शंकराचार्य को अपनी हार माननी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने, वो एक लंबी कहानी है, और उसके बाद उन्होंने अपनी बात आगे रखी और वाद विवाद में ना सिर्फ मंगल मिश्र को बल्कि उनकी पत्नी को भी अपनी बात से समझाया और अवगत कराया और माना उन्होंने। तो इट इज ए कंटिन्यूसली अपडेटिंग प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देश काल पात्र। वही समय बात जो एक व्यक्ति के लिए ठीक है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक ना हो। तो हमें करना क्या है कि हमें इस हमारा जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी है, इन दोनों को कंबाइन करते हुए मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश एक समय था कि इनोवेशन इंडेक्स में नई चीजों को टेक्नोलॉजी साइंस स्पिरिचुअलिटी इन सब में सबसे आगे था। ये जो 1200 BC से लेकर और 1380 तक का यानी आज से करीब 700 साल पूर्व तक हम हमेशा अग्रणी रहे हैं। एक बीच का समय ऐसा आया कि हम अपनी उन वैल्यूओं को अपने मूल्यों को हम पीछे छोड़ के कहीं पीछे छूट गए विभिन्न कारणों से, आप सब जानते हैं उनको। और बीच के दौर में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तहस नहस होकर के एक पाश्चात्य तरीके जो खुद अपने आप में परिपूर्ण नहीं थे, चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे वो आपका एजुकेशन सिस्टम हो, वो भी इवॉल्व हो गया था। लेकिन आगे पाश्चात्य देशों में तो वो इवॉल्व होता चला गया। हम कहीं आज से 200 साल पहले गुलामी के युग में अटक के रह गए, चाहे वो हमारा मेडिकल सिस्टम है चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है चाहे इंडस्ट्रियल सिस्टम है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमें कैचअप करना है और हम जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग अलग चीजें हैं? ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट साइंस का है और स्पिरिचुअलिटी का है वो हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भिन्न रहा है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाता रहा है, जबकि वैदिक साइंस एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट रहा है, चाहे वो आयुर्वेद है। मैंने एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा की किताब पढ़ रहा था मैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस विद इट्स ऑल इट्स मॉडर्न एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट्स इज स्टिल इन इन्फेंसी, वेयरएज आयुर्वेद इज द कंप्लीट मेडिकल सिस्टम। एंड आई थिंक द सेम इज ट्रू फॉर एस्ट्रोनॉमी, वास्तुशास्त्र एंड मिलिट्री साइंस एंड ऑल अदर साइंसेज। नाउ फर्क यह है कि एग्जिस्टेंस, हम जब साइंस की बात करते हैं कोई सी चीज की एग्जिस्टेंस वो सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, हमें बताया जाता है कि जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाती हम कहेंगे कि वो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इस समय आपके पास होने का प्रमाण नहीं है तो क्या ना होने का प्रमाण है? ये एक सोचने की बात है। समय कम है तो मैं इस पर ज्यादा अधिक चर्चा ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी साइंस का ही एक हिस्सा है, बशर्ते कि हम साइंस को सही मायने में देखें। आज हम सिर्फ जैसा मैंने कहा कि जिस चीज का प्रमाण नहीं मिल रहा हम उसको मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ईश्वर के होने का प्रमाण नहीं है तो मान लें कि ईश्वर नहीं है, हमारी साइंस ये नहीं कहती, हमारी वैदिक साइंस ये नहीं मानती। मुझे जल्दी समय इसको मैंने काफी समय ले लिया आपका, तो मैं जल्दी खत्म करते हुए इसको कहूंगा कि हमारा देश का ये विजन होना चाहिए, हमें एक इकोनॉमिक पावर बनना है, मिलिट्री पावर बनना है, एक नॉलेज पावर बनना है और साथ ही एक स्पिरिचुअल पावर बनना है, एक विश्व गुरु के रूप में हमें दोबारा से उभरना है और सबसे आगे खड़ा होना है। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी। बहुत सुंदर आपने कहा कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। साइंस के बिना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बिना साइंस नहीं है। साइंस के दुनिया के दौर में कहीं ना कहीं हम उसमें खो करके ये कंफ्यूज्ड हो गए हैं आजकल, लेकिन जब हम अपने मन को ठीक रखते हैं तो फिर हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करती हूँ, अपना विचार इस टॉपिक पर रखेंगे। आदरणीय आरसी रैना जी, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ दिशा टीवी दिल्ली। आप बचपन से ही बहुत धार्मिक विचार के रहे हैं और साधु संतों के संग आप पले बड़े हैं। ही इज अ वेरी क्रिएटिव राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोग्राम प्रेजेंटर, सोशल एक्टिविटीज एंड एडवोकेट ऑफ सनातन धर्म। ही हैज बीन वर्किंग विद प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड प्रिंट मीडिया फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। ऐसे बहुत ही महानुभव हम कहें कि आरसी रायना जी हमारे समक्ष है, आपसे अनुरोध करते हैं डायस पर आकर के अपना विचार रखेंगे।
ओम शांति। ऑनरेबल चेयरमैन बीके रमेश जी, बीके अंबिका जी, प्रोफेसर रामगोपाल, श्री रवि गुप्ता जी, बीके अनूप मराठे जी, बीके सुमन, अदर इल्यूम्ड गैलेक्सी ऑफ गेस्ट्स हु आर प्रेजेंट ऑन द डाइस, सिंटिलेटिंग ब्रह्म कुमारीज हु आर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, रिसर्चर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, आई विल डिवाइड माई प्रेजेंटेशन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी द थीम ऑफ द टूडेज सेशन एंड अनदर इज माई रिसर्च एंडेवर विच आई एम अंडरटेकिंग करंटली। टूडेज थीम विच इज स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, हार्बिंगर्स ऑफ ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर, इज परफेक्टली डिजाइंड एज पर द नीड ऑफ द आर। There is definitely world disorder, whether we talk about our joint family, environment, human and other living organism, wellness, relationships, value and culture, harmony between nations, educational system, unrest in youth, etc. So, the need of this topic. On one hand, population is growing and has reached to 700 crore across the world, and on the other hand, demand and supply of both essential commodities, goods and luxury items is of great importance. So how to strike a judicious balance between the two topics? A person has to reach in 2-3 hours to Mumbai from Delhi for an important meeting. We cannot ignore it. Another person has to talk to her husband in New York through video conferencing. We cannot ignore it now. Third person has to plow his fields fast and with accuracy. We cannot ignore this also. Another person wants to watch Brahma Kumari Shivani Behan on national television. Another person has to complete online SAP assignment of a UK firm to earn livelihood. Another student has to appear for online MBBS examination. So what is the way out? This is the requirement of modern world. So we cannot ignore science and technology. On the other side, the flip side of the coin is spirituality. A leader in an MNC has to be patient, sober, magnanimous, caring and loving. Husband has to behave in a sophisticated manner with his wife and children and love them after coming home from a hectic schedule. A person involving heavily in drugs, alcohol, smoking needs rehabilitation. Another angry person needs solace. Another person needs peace of mind. Another person needs high efficiency and productivity. And another person needs transformation, transcendence and God realization. Politicians, as my friend Kamalji was telling me in the morning, that politicians need good decision making and accuracy and creativity to run the government. So spirituality is the way out for these issues in the society. So both are needed. Therefore, for a new world order which is progressive and developing and which is peaceful, in which human beings and other living organisms are peaceful and happy, the sign and indicators are science and spirituality. They are omens and foreshadows of a new world order. So let me draw a hypothesis, because besides being a TV broadcasting professional, I am a researcher also in the field of spirituality. My hypothesis is that a person with great spiritual insights can become a constructive scientist. I repeat it again, my hypothesis inference is that A person with great spiritual insights can become a constructive scientist. There are scientists who are moving towards the destruction. You take the case of Otto Hahn and Morrison, who dropped a nuclear bomb, atomic bomb, on Hiroshima and Nagasaki, and spoiled the lives of millions of people in Japan. Unfortunately, there is growing difference of opinion between social scientists and technology scientists. It grows larger in case of spiritual scientists and technology scientists also. According to me, spiritual researchers and technology scientists study the laws of nature, so they are not different. Everything exists already. We just explore that for our knowledge. Didn't the laws of gravitation exist before Newton discovered them? They were there. Did not photons, electrons exist before they were discovered? Yes. I will take the example of few scientists for your reference and more discussions. Niels Bohr, he devised atomic theory. We say that kan kan mein bhagwan hai. God exists in every particle of this world. What? We are not different from Niels Bohr. He also said, he discovered the same thing. He said that the smallest particle in this world is atom, and it is indivisible. We cannot divide it. It is the smallest particle. It has got energy because it has nucleus which contains protons and neutrons, and in the orbits revolve the electrons. Whenever electron moves from inner orbit to outer orbit, it gains the energy, and when it comes back from outer to inner, it releases the energy. So he was in there was some analogy between spiritual scientists and the technology scientists, that is Niels Bohr. Albert Einstein, he gave us theory of relativity, which is mass energy equation E equal to mc square. His intellectual achievements and originality have made the world Einstein synonymous with genius. So we can have inference that Einstein was the most spiritual person in this world. Decades of literature review, data collection, devising methods and methodologies, research of to conclude, he got Nobel Prize in 1921. In his book, The World I See It, in 1949, he called himself as agnostic while disassociating himself from the label atheist. He was not an atheist. Let me unquote one quotation from his book. A knowledge of the existence of something we cannot penetrate of the manifestations of profoundest reason and the most radiant beauty, which are only accessible to our reason in their most elementary forms. It is this knowledge and this emotion that constitute the truly religious attitude in this sense, and in this alone I am a deeply religious man. Steve Jobs, you are holding today the most sophisticated technology and smartphones of iPhones, Apple. iPhones, iPads and other technologies of Apple company, Mac Pro. The founder was Steve Jobs. Let me tell you that he was the most spiritual person. He would remain on fruits for 20 years. He lived on fruits. He was a fruitarian. He would not touch food. He was taking meetings in his conference room while being in Padmasana, because he had visited some saint in India and he followed him. He was a religious person, not drinking alcohol, not taking non-veg, not smoking, nothing. He was the founder of that person. Maslow, you know the need hierarchy of Maslow, which is the highest need is self-realization. He worked on that and gave very good theories to the world. Now the spirituality. A person who believes in religion cannot be a spiritual person. This is my another hypothesis, inference. A person who believes, who is a religious man, cannot be a spiritual person. Being a religious man is the primary class. You have to move ahead. You have to be away from Hindu, Muslim, Sikh, Isai. You have to go beyond these things. After that, you can become a spiritual person. Religious is a narrow band construct as per Sapilka. While one believes in ritual customs, physical forms, orthodox theories, etc., religious cannot see the world as one and governed by one, that is nature. It divides people on the basis of caste, class, community, like Hindu, Christian, Muslim, Sikh, etc. Here the limitations occur. We see with a limited vision. It is like thinking about a pond, and about a pond in which there are frogs, and they think that this is the world around them. On the other hand, spirituality is a broadband construct. Research papers on spirituality have been extensively done across the world by various research scholars. It is like a scientist studying natural laws, whether it is radioactive material, uranium, semiconductor, or other some satellite technologies and other things. Deeper observations review is mandatory in both the cases. Our rishis were the greatest scientists in this world, because they devised and researched out the best theories in Vedanta, in Upanishads, in Bhagavad Gita. The people who have studied Bhagavad Gita, they remember that. You see, the class of the research about action, karmane devadhikaraste, one's right is to work only, nothing is the fruit thereof. Let not the fruit of action, nor let attachment to the action. About the anger, krodha, damastha, sammoha. From anger arises illusion. From illusion arises confusion of memory. From confusion of memory arises loss of reason. And from loss of reason, one goes to complete ruin. So these are the theories about the food, sattvic, tamasic, and rajasic food in 17th chapter of Bhagavad Gita. So all were researched out in nicely by various research scholars in the Hindu Dharma. So let me go to my second topic, because time is very short. That is my research endeavor. I am doing research on impact of spiritual TV channels, a perceptual analysis of the people of greater NCT of Delhi on and the research endeavor, which is that because it inspired me. Previously, I had studied various research papers on impact of news on viewers, impact of entertainment programs on viewers, impact of sports programs on viewers. But later on, I, being with Brahmakumaris, being with religious organizations across India, I came to understand that there must be some impact of spirituality on human beings. There must be, if there is some impact of spirituality on human beings, there should be impact of spiritual TV programs on viewers also. So I started research on that. I am doing research from the last 3 years. My thesis, my inference is that whether these spiritual TV programs, they benefit work performance of an individual or not. Whether the work performance of an individual is improved by watching spiritual TV programs or not. Another objective hypothesis is that whether these spiritual TV programs change the habits of an individual or user or not. And third one is whether these spiritual TV programs change the behavior of an people or not. And whether these spiritual TV programs influence the purchasing behavior of an individual or not. So these are the cases which I am studying, and by December 2014, I will be submitting my thesis, PhD thesis, to the University of Mysore. When I submitted my synopsis, they were all wondering whether there is some scope for spirituality in research, because till date, people were treating this as qualitative sciences. They were seeing the impact as a qualitative impact. But first time in the research, I am taking it as a quantitative, because I will be taking dependent variables, independent variables in the study. I will devise a mathematical model, and that will give new dimensions to this study. So with this, I end my presentation, and I am thankful once again to Aditi Behan, to Satish ji, who keep on coming to our channel office at Disha TV, Delhi, and I am thankful to them because they have given me this opportunity. Thanks to the Brahmakumaris, other office bearers and management people of Brahmakumaris who have given me this opportunity. Thank you very much. Om Shanti.
थैंक यू वेरी मच मोस्ट रेस्पेक्टेड आरसी रैना जी. बहुत सुंदर आपने कहा कि कैसे आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी एक नीड ऑफ द आवर हो चुका है. इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम कहाँ ना कहाँ कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा, जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा को कभी मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया वो संभाला जाता नहीं. क्यों अजीब सी है जिंदगी, अजीब सी पहेली है जिंदगी. तो इस पहेली को हम कैसे सुलझाएं, कि कैसे हम संतुष्ट रहे, कि जिंदगी को जीने के लिए दो तरीके हैं. एक है जो पसंद है उसे हासिल करना सीख ले, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख ले. तो ये दो तरीके हैं जिंदगी को जीने के लिए. अभी मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करती हूँ, मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर जनार्दन जी, जो बहुत ही एक एमिनेंट साइंटिस्ट हमारे बीच में है. ही हैज बीन अवार्डेड विथ मेनी अवार्ड्स, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन अवार्ड, ऑल इंडिया मैनेजमेंट अवार्ड फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड किसान मिर्ता अवार्ड्स, एंड हिज ऑल इज presently the head and the principal scientist of land water engineering and environmental research program of the Indian Council of Agricultural Research Complex for Eastern Region, Patna, Bihar. Most respected Dr. Janardhan ji. जो ऑडियंस में बैठे हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि बैठे रहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में आदरणीय रमेश भाई जी और आदरणीय जयंती बहन जी, जो लंदन के यूरोपियन हमारे राज्यों के सेंटर्स के डायरेक्टर हैं, आने वाले हैं. तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बैठे रहेंगे.
ओम शांति. On the onset, I must pay my gratitude to the organization, the Brahma Kumari, who has given me the chance to speak before you on science and spirituality and what can be done in the organization like R&D organization and the higher education. You know, the development cannot be done without the research, without the science, and the higher education is the pillar for that. And unfortunately, we who want to be a total quality person, having the mastery over the physics, mastery over the finance, mastery over the emotion, but equally our need is to have the mastery over the spirituality. And what can we do? A large chunk of people in this are the researchers, scientists, teachers, faculty and academicians. And if they are the role model for the next generation, then only perhaps the next generation will try to inculcate the good habits which can help in raising the productivity. The productivity cannot be raised without the science and technology. We say this is the age of information and technology, but this technology cannot give anything if it is not productive. And how we can make it productive is $1,000 question. So in this, I will be sharing my views on this. The question of values, what values the research organization, the RDR organization should bear. Too often, the new technology develops with little attention to its impact upon the human values. Just now I was sitting there and my senior friend was talking to me that what has happened, you have so many revolutions in the world, in India, the green revolution, the white revolution, blue revolution, brown revolution, yellow revolution, but the problems are enormous now. The soil is degraded now, the water is polluted, there is a erosion problem, there is a pollution problem, everything. So if the technology, if the science, if the information, if they are not on the basis of the wisdom, then it will not be used. So let us stop here. And for 1 minute, we should think. What we should think? We live in the age of rapid advances. And this rapid advance of science, you know, in the last 6,000 years of our evolutionary history, what quantum of knowledge we have generated. We have generated the equal amount in last 25 years. So it is very fast moving. And this is giving a very fast pace for us to think what will be the way of life, what will be the art of life for us, how we can use this science, the benefit of how we can harness the benefit of the science in this. And that is required. Modern science and technology is still every day brewing new thoughts and about revolutionary change in everything, in every walk of life, not only in the production mode, but our lifestyle, our social structure and everything. And this is the time when we must think about what should be the way of life for people, especially those people who are in higher education and the owners of generating the new information is with them. So, even in Mahabharata, the God says that all my life I have been crying out with upraised arms, follow the dharma, and the artha and karma will follow. Alas, who cares, who listens? But no, when I have seen people like you sitting here, so many people following all over the world Brahma Kumari and the preachings of it, it shows that still there are people and still there is a hope, and this is leader's hope that makes the world better. We must remember, the societies are never ruined by the actions of rascal. It is always ruined by the inaction of the good people. Who are the good people? The good people with good character, the good moral, the good ethical values, and good high standards, with what they can set in there. And that is required. And this is the time of the 3T, what we call 3T, is the time of turbulence. The whole world is in turbulence. The whole people, even the family is not stable. Leave aside the different countries and all. There is fight everywhere. The whole world is fighting. And this time of the world is also transforming. This transforming must be from good to better, not from good to the what we call the worse. And for that, the technology must be used. And this technology comes out from the science. And that science requires to be very, very true and very, very scrutinized on the what we call on the process of high values and ethics. And that comes from many sources. It is not that the ethics and values comes from one source, in meeting or togetherness like this, but it can come from the religion, the society, the norms, sanskar, Sanskriti, Constitution of India is also one source, and the Government of India Code of Conduct, society rules, our culture, and so many things from where we can take it and customize it, tailor-made it to suit the need of the different sector of the society. So, what are the motivational structure which can help to build the good ethical behavior and a high moral standard? There can be many factors. There can be money, the security, the recognition, love and affection, ego power, authority, adventure, knowledge, skill, expertise, ethics, value and moral, and actualization. And most of the things has been discussed in the last 3 days very elaborately, and we know the value of all these, but how and why and what will be the way for people who are in the helms of affair of the education or in the science and generation of our science and technology and their application to the society, their refinement and their adoption of the technology. Because if we are not adopting all those technology which is coming for the welfare of the people, then we will be left back in the race of the development. So the ethical check questions are there. Everybody must check what is required. When we are doing a thing, whether it is a good thing or a bad thing, what is good and what is bad? So there are many criteria on which we can check this. This is, we must ask, is it legal?
it is balanced? Does it promote the win-win situation for both? How will it make feel about myself? It is done to me only. What I, if I am not giving respect to other, if I see the younger is also not giving respect to me, what I will feel in that? Will it take me to the pride of performance, the pride of contributing to the society and others? Would I feel good if my action was published in the newspaper? Would I feel good if my family knew about it? Would I recommend with action to my child? Will it give me long-term satisfaction? Is it social or organizationally accepted? These are the small questions. If we inculcate in your life, in your daily ways, in our behavior, in our action, we feel most of the ethical things will be covered, and the organization will certainly be not only be productive, but it will really contribute in making a better world. So now come to the why this is more important for the organization of R&D organization and higher education. Because new technologies are covering the new vistas, breaking the new barriers. So one is the biotechnology area, and this issue of ethical and moral value is very important. The IPR issue, the patent issue, the genetical piracy, genetical engineering, seed ownership, biospectrum and human genome diversity, genetic pollution and stem cell research are some of the area where very cautiously and with very high concern for the human welfare we have to be forwarding ourselves and see what we can do in this and how the organization in the rat race of publishing good things for our own promotion as a scientist, from senior scientist to principal scientist or chief scientist, reader to professor and chief professor and all those things, this makes us a participant of the rat race. And even if we win the rat race, we are still the rat. So we have to see that when we are using the technologies, how should we? The second area after the biological technology is the nanotechnology. Number two is the nanotechnology where the caution is to be. And there need to be evolved a high ethics and high moral values for the researcher, for the scientist, for the applicator, and for all those who have a stake in this technology. The uncertainty about the effect are in many areas, this area can be. And so on. And this can be used in a future, what we call biological beep. And that's why when we are researching or educating or advocate, we should be very cautious for that. The third area is what we are facing today, especially in India, which is an agriculturally important country. And the climate change and the global warming is affecting us. Only this year we have seen that the monsoon was delayed more than 45 days, and when the delayed monsoon came, it also came as a havoc flood, and a lot of humanity is suffering. So selective dissemination of information, the cherry picking, the aggregation, geoengineering, carbon emission by developed countries, they say they did not do it knowingly. They are saying, so what should be our way. Because we have seen people making mistakes. We ourselves, the Indian people who are proud that we have given the green revolution, white revolution, blue revolution, brown revolution and yellow revolution, we also feel that most of the problem today has been generated by all those with the rapid generation of technology when we didn't think of its byproduct or the second generation problem. The third issue is the ST, that is what we call the space technology. This is one area where in the higher education, the research, or therefore the researchers that they should be concerned for. Of individual piracy, space supervision, the RS, GPS, GIS, and several methods and tools and techniques which has come recently, and using the satellite for the purpose which are not so what you call the accepted by the society or the nation, the information advantage and using it for the welfare of the nation. The other important point beside all those major issues can be of the health, operations, high technical, high cost, nuclear science, scientific hype and scientific fraud which is being done these days. This is because we lack the standards in scientific ethics and moral and values. The science and technology for mankind must be aimed for the global welfare. If it is not there, then. And we say that we are at the level of very hard core, but it is the hope that, you know, every time after the thunder, after a storm, only the rainbows come. And it is there. And that's why Baba says that the new world will come. The new world, the world of hope, where everything will be the right. There will be, everything will be like the paradise. And in that, we can see that the double-edged weapon of science and technology is used for the welfare of the human, for the welfare of the world, for the welfare of the natural resources, for the welfare of this beautiful world which has been given to us. Otherwise, it can jeopardize the whole sustainability, the whole world, the whole the humanity, and this can be laid the moor, and this can lead to many dangerous situations for this. Now let us come on my experience of working with the Indian Council of Agriculture Research and Indian University. We have faced numerous problems, and here I have presented a matrix in which I have given what we are normally we are facing these days. What are the ethical and moral values? The scientists are working in watertight compartment. There is a hierarchy. They are not sharing the incentive. They are not sharing the facilities. There is personal effectiveness is near there. Lack of discipline there. Expertise, close, very close things. The duplication of work, reinventing the wheel. So many things are there. But this is not also exhaustive. You can, on your experience in working in the university, you can find this can be, list can be very, very, very long, and you can feel this, that we need to evolve a very high standards for the values and ethics for scientists, for researchers, for academicians, and all those who have a stake in it. I assure you that the science and technology is one area in which the stake of all the 7 billion people are there. There is no man who can say that we can be. Even the spirituality is the all based on science, and this is a science which we have to understand. I will just, because the paucity of time, I will like to emphasize on some of the area, like say, what are the ethical problems these days? The ethical issue is authorship of research publication and credibility. Kya hota hai? Dual submission of the article, honorary authorship. Paper mere student ne likha hai, lekin chunki main uska boss hoon, main head of department hoon, main director hoon, mera bhi naam usme jana chahiye. Manipulation of the experimented cooking of data using cut and paste technology, confidentiality, groupism, so many things are there, and it is every institute, every higher education, we all are facing this, and we are the part of this. And see, if you are a part of the problem, this is high time we must pause, stop, and think what should be done. Only if we are the part of the solution, then we can think of contributing something to the society. And this is the ethical behavior, what we can. The situation too is the recent, the present situation of ethical issue of authorship and research and its credibility can only be given if by, so this is a simple situation which I have given here. So you can see there. Ethically and on the basis of the value, the conception of the idea and the design of the experiment, if it is done by someone and if somebody contributed in this, or he has actually helped in the execution of the work, or the hands of the laboratory or the field work, or analysis of the data or interpretation of the result, and actual writing of the manuscript, then only the authorship should be given to this. Is it we are doing this? Is it we are following this? If we can follow it, it will be a great help to the people. And this will be the incentive to the scientist that his real work will be done, accepted, and he will be author. So, there are some things which we must. What because this is the hierarchy where we have to work in an organization, and an organization has a culture, is a climate where we have to work. But the scientists have some characteristics in that for ethics, or based on the ethics and value system, to be effective and efficient. They must dare to differ. Boss is not always right. Power of transparency, effect of role model, magic of the team exercises, creativity and innovativeness, acceptance of the challenge, value of time and pride of performance, prioritization, first thing first. A student is the king, the researcher is the king, the success of the perseverance, pleasure of working, caring and sharing, dignity of simplicity, worth of character. And this is also a long list. And most of the things, most of the traits, most of the characters which a man, a total quality man should possess has already been discussed. And I feel that this is more important in what we call. So in the last, I say for all the scientists, all the participants, that we must pray in a new prayer method which should include this. That we can say, oh Baba, grant me the spark to imagine, the daring to be innovate, the discipline to plan, the skill to do, the mission to excel, the will to achieve, the commitment to be responsible, the work to be productive, the leadership to motivate, the morale to be role model, the expertise to contribute to the nation building, and blessing to be the honest and true human being with ethics and value to leave a legend. We are not here for the whole life. After life, if we also are remembered as one discipline of Baba. As Baba is being remembered after such a long time also, and his prakash is dhire dhire badhi raha hai. To ye hai, aaiye hum us abhiyan mein apne ko shamil kare, jab ethics, moral aur values ko. अगर ये आने लगेगा तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप निकल करेगी. दैट विल फॉलो एंड दैट विल कम. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू वेरी मच मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर जनार्दन जी. आपने बहुत सुंदर लास्ट में प्रेयर आपने सुनाया. इससे कुछ याद आया. एक सुपरवाइजर थे जो बहुत बड़े एक इमारत बन रहा था. तो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द 13th फ्लोर एंड नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ कारीगर काम कर रहे थे. तो वो आवाज लगा रहे थे ऊपर से सुपरवाइजर कारीगर को, तो लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था. बहुत मशीन्स चल रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि चलो वर्कर को थोड़ा ध्यान खिंचवाने के लिए मैं 500 का नोट गिरा देता हूं. तो 500 का नोट उन्होंने गिराया तो कारीगर के सिर पे पड़ा. वो लेकर के जेब में डाल करके फिर वो काम करने लगा. तो फिर ध्यान कैसे खिंचवाए दोबारा. फिर उन्होंने सोचा कि चलो 1000 का नोट मैं गिराता हूं. तो 1000 का नोट उन्होंने गिराया. फिर उस कारीगर के हाथ में वो गिरा तो उसने फिर वो निकाल करके जेब में डाल के फिर वो काम करने लगा. तो अभी करे क्या, उसको बुलाना है, कुछ काम है, कुछ बोलना है, बताना है, क्या करूं. तो नोट गिराने से तो वो ध्यान नहीं जा रहा ऊपर, ऊपर देख ही नहीं रहा है. तो उन्होंने सोचा चलो पत्थर फेंकता हूं. तो छोटा सा कंकर निकाल करके उन्होंने उनके सिर पे फेंका. तो सिर पे फेंकते ही झट से उन्होंने ऊपर देखा तो कौन गिराया. तो बहुत गुस्से से. तो अक्सर करके भगवान भी शायद ऐसा ही करते हैं. तो हमको बहुत फेवर्स देते हैं, बहुत सारे बहुत खुशी देते हैं, बहुत सारे सुख देते हैं. उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है कौन दे रहा है या उनकी मेहरबानी है. भगवान के तरफ ध्यान नहीं जाता. लेकिन जब हमको दुख मिलता है ना, तब फट से भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं. सो दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी माना हर रोज मेडिटेशन करना, हर रोज ध्यान करना, हर रोज भगवान को याद करना. दिस इज स्पिरिचुअलिटी एंड दिस हेल्प्स अस टू डेवलप दोज वर्च्यूज इन आवरसेल्व्स. ऐसे स्वार्थ भरी याद नहीं है, लेकिन प्यार भरा याद भगवान को करने की जरूरत है. अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करने जा रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड आरसी लामेची जी, हु इज फ्रॉम नेपाल, हु इज अ चेयरपर्सन ऑफ इमेजिन नेपाल एंड ऑल्सो द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ ईस्टर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पॉजिटिव साइंस. and the executive director of Association of Community Radio Broadcasters Nepal, and is also professional training facilitator for the last 17 years. Is also the political analyst and column writer in national dailies. Most respected Mr. R.C. Lamachiji.
Om Santi.
Sorry for the interruption. Most respected Jayanti Behen is amongst us. We welcome her. And Brahma Kumari Behenon se main nivedan karti hoon. Jayanti Behen ka swagat badge aur bouquet se karenge.
Om Santi. Bahut dhanyavad Suman Behen ji. Pujaniya Dadi ji. Bhai ji. मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तित्व और इस समारोह में उपस्थित सभी आदरणीय दीदी जी, भाई जी, बहन जी, मैं आपका व्यक्तिगत तरफ से और नेपाल से आए हुए हम 25 डेलीगेट्स की ओर से बहुत नमस्कार के साथ अभिनंदन करना चाहता हूं. इन नेपाल वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एनिमल कॉल्ड कस्तूरी. प्रोबेबली यू नो द कस्तूरी इन इंडिया ऑल्सो, राइट? So the kasturi, it produces a beautiful smell from its stomach, and kasturi always run here and there to find out the source of that smell. What is the source of smell and where from the smell is coming? That runs from eastern Himalayas to western Himalayas and spend the whole life. Aur mujhe yahan aakar ke pata chala ki hum kis darshan mein virasat hai aur kitne powerful hai hamari darshan. पीस के लिए हम लोग अमेरिका और यूरोप स्कॉलरशिप पा करके पढ़ना चाहते हैं तो अपने आपको बहुत भाग्यवानी समझते हैं. और हमको यहाँ आकर के इस समारोह में आकर के पता लगा कि हमारे पास क्या है. हमारे पास वो शक्ति है जो नॉट ओनली इंडिया एंड नेपाल, वी कैन स्प्रेड द पीस ऑल ओवर द यूनिवर्स. सो आई फील प्राउड बींग पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस विच हैज गिवन मी एक्स्ट्रा एनर्जी to move forward for the peace and stability through the Eastern way. So I'm very much thankful to providing this opportunity. Nepal Rajyog Tamil Centers, who insisted us to participate this program, and I am in this moment particularly want to remember Ram Singh Bhai Ji, who personally empowered me, and Dadi Ji, jinhone blessing ke saath tika laga karke hum log ko vidai kiye the wahan se, aur hamare Sudeep Bhai Ji, jo मैं तो पहले बार आया हूँ, जिन्होंने बहुत स्नेह के साथ हमको गाइड किए, और हमारे अजय भाई जी जो विराटनगर से हमारे और नेपाली डेलीगेट्स के साथ यहाँ आए और हम लोग को इंस्पायर कर रहे हैं. सो आई एम रियली फील प्राउड. और बीरगंज के दादी जी जिन्होंने टीका के साथ हमको विदाई किए थे बीरगंज से, सो यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा कि आई एम इंटरिंग इन द लिव लाइफ. सो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि दिस इज द वे टू ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड थ्रू द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. और मैं यहाँ कुछ बात करने जा रहा हूँ हाउ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर कैन ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी. सो हमारे शास्त्रों ने सोसाइटी के आधार में हमें तीन कैटेगरी में विभाजित किया है. प्रारभ्य तो नखलु विघ्न भय न निथई, प्रारभ्य तो विघ्न विहिता बिरमंती मध्य विघ्न पुनः पुनः प्रति अन्य मान्य प्रारभ्य तो मुक्त मजाना प्रत्यदानती. तो हमारे शास्त्र के मुताबिक सोसाई के आधार में हम तीन प्रकार के लोग होते हैं. एक प्रकार के लोग जो भविष्य में आने वाले विघ्न के डर से कुछ काम नहीं करते हैं. सो ऑलवेज ग्रेट टू टेक द एक्सक्यूज, ऐसा तो करना चाहता था लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे फिर. तो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मोटिवेशन और अल्पज्ञान के वजह से काम शुरू कर देते हैं लेकिन थोड़ा भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो अरे भाई ये तो मेरे बॉस की बात नहीं है, आई शुड क्विट दिस ऑन टाइम एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट टू क्विट द वर्क ऑन टाइम. लेकिन तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो काम शुरू करते हैं और रिजल्ट पाकर ही छोड़ते हैं. सो हमको यहां सोचना चाहिए हम किस तरह की सोसाइटी हमको बनाना है. Or how is that possible? It's a material or spiritual? What is the fundamental of transformation? If you look back the 250 years history of development of like physical development and scientific development, is that development gave us happiness. We have lots of facilities. These facilities can give us happiness. If you look back like Marxist, the principal ideas of Marxism is the consciousness of the people is determined by the matter. We tried Marxism and that is almost all failed. Now the Marxist leaders are saying that, I am a student of political science, so they are saying that Marxist, there is a big gap. It doesn't care about the emotional aspect of the human beings. So unless we care the emotional aspects, we cannot create the sustainable development. So the fundamental question is that how we can create the sustainable development, how we can, what is the fundamental point? What is the source of transformation? So I am sure all of we have got lots of transformation in our life. If you look back that transformative mode, what was the fundamental step? What was the fundamental step that you and I could able to transform the life? So the transformation begins from the inquiry. The question is the fundamental of the transformation. If you look back the history of Mahabharata, Ramayana, and if you look back your personal life experience, the transformation began from questions. So here, spiritualities help us to find out the right answer of the questions. Or it helps us to craft the right questions. And one thing let me tell you, in social science, answer is always right. Crafting right question is very much difficult. So spirituality is that science which helps us to craft the right questions. If you have right questions, then that can drag the right answers. So it's spirituality, it's arts and science of self-transformation. So we have lots of discussion about the spirituality and like how we can change our society is the beginning is the positive thoughts. If we have positive thoughts in the head, our hand work positive activities. If we repeated our action, that becomes habits, and habits converted into the sanskar, and sanskar creates the positive society. So, what is the goal of life? Why we are here? Are we here to fix the problem or create the opportunities? What is the goal of the life? We want to resolve the problem or we want to create more opportunities. We are suffering from the multiple realities. In pure science, only one reality. But social science, there are lots of realities. So we need to understand what is the relevant realities for me. So this is in 21st century, science has done lots of progress and scientists say this is the time of transformation into imagination, in speed of imagination. After the evolution, after the evolve of the quantum physics, there evolved lots of new methodologies for the transformation. So we need to understand how we can bring the positive transformation and what is the appropriate way. So now we need to find out root cause of the success, root cause of the prosperous future, root cause of the achievement, rather than sticking in the root cause of the problem. If you see the like span of the problem, it starts from yesterday and finishes today. Have you ever heard the problem statement in future tense? No. So human life is for present and future, and in between present and future, there is potentiality, there is opportunity, there is hope, there is creativity. There is one story in the Gita. A man got एक आदमी को हार्ट का था और खून बहाते हुए उन्हें वो डॉक्टर के पास गया. कितना दर्द होता होगा जिसका हार्ट कटता होगा. तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उस हाथ पर बिना पेन किलर के स्टिच किया. आप बताइए उसको सहन शक्ति कहां से आया उस वक्त. वे फ्रॉम दैट टॉलरेंस पावर हैज कम. उसे लगा कि अगर ये दर्द मैं सहन करूंगा तो मुझे मेरा घाव ठीक होगा. देयर इज द होप. एंड इफ वी कैन क्रिएट द होप, द हीलिंग प्रोसेस विल बी फास्टर. कल एक हमारे बीके भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, हेल्पलेस होपलेस होपलेस फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन लीड टूवर्ड द सोसाइटी. सो हमें होप क्रिएट करवाना चाहिए, एंड इफ यू डील विद द प्रॉब्लम यू कैन नॉट क्रिएट द होप. द प्रॉब्लम इज द सोर्स ऑफ होपलेस सोसाइटी. सो हमका ऐसे रीफ्रेमिंग करना चाहिए. देर इज डायलेक्टिलिज्म इन एवरी सिचुएशन, देर इज प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज आर टूगेदर. सो क्वेश्चन इज दैट विच वन वी नीड टू टेक. सो इफ हमारे लाइक गोल प्रोस्पेरस है, तो वाई शुड वी शाउटिंग फॉर द पॉवर्टी. लेट अस टॉक अबाउट द रूट कॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी, वे ऑफ द प्रोस्पेरिटी एंड मेथड ऑफ द प्रोस्पेरिटी. सो दिस इज द लाइफ. इफ लाइफ इज 100%, there is both strength and weaknesses are together. If you are 100% perfect, then you are Buddha or Baba Prajapati Brahma. Otherwise, there is always ups and down between 99% to 1%. If you don't have any like strength, no life is there. So this is the like combination of life. So in that scenario, where should we focus? Weak in the part of the weakness or in the part of the strength? So now we need to understand, what is the purpose of my life? My life purpose is reducing weakness or increasing strength? What should be the goal of life? Kya hai, hamare kamzori ghatana hai aur sabal paksh ko badhana hai? So you cannot increase your strength by decreasing the weakness. There is a theory called social construction theory. The words create the world. अगर हम कहें धर्म का एक अलग संसार होता है और विकास का दूसरा संसार होता है, साइंस का अलग संसार है, स्पिरिचुअलिटी का अगर अलग संसार है. सो इफ वेर यू वॉन्ट टू गो, यू नीड टू चूज दैट वर्ल्ड. एंड देर इज अ थ्योरी कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिमल्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी एंड सेंस गो हैंड इन हैंड. इफ यू इंक्वायर फॉर द स्ट्रेंथ, you can create the strength. If you are inquiring for the like weaknesses, you are creating problem. So solving yesterday problem doesn't bring you different tomorrow. So that's why Einstein once said, the definition of insanity is doing same thing again and again expecting different result. So we are trapped into a kind of vicious circle, that vicious circle of thinking that doesn't allow us to move transformative way. So here we need to be clear. Strength should be our focus, because we have lots of strength. There is a one American story. One small grandson asked the grandfather, "Grandpa, two thoughts are fighting inside me. Which one will win?" And the grandpa asked, "What are the thoughts?" One thought of mine said, you cannot do anything in your life. You are gone. And what is the other? The other said that, you are the great person, you can be a great person in the world. One day you will have the name and fame. These are the two thoughts fighting inside me, which one will win? And the grandpa said, which one you feed? Which one you feed will grow inside with you. So in which thoughts we have to feed? So that is like, that is the structure. That is the mechanism. So here we need to take the big paradigm shift to unleash our positive potential. So now, if we think like yesterday, we cannot, if we think like yesterday, if we think today, we cannot change our tomorrow. And the reality is that you cannot change your present, because present is built on the base of past investment. Only we can change our future. Only we can change tomorrow. If you want to change tomorrow, plant the seed today. And spirituality is the seed for transformation. So now we can transform through the meditation, vision, imagination building, willingness for change, breaking out the comfortable zone and creation of the desired zone, building new values for the life, and appreciative inquiry. So what appreciative inquiry is that? Appreciative inquiry is a recent developed management tools which foster the transformation in the organization, personal life and society. It believes that in every system, if the system is working, no matter how trouble is that, there is something to value. And if we can increase that value, that can bring the transformation. And also spirituality believes that each and everyone is unique. We have lots of different potential. And if we put all potential together, there will be the transformation. And that is called, now we need to think from systemic approach, not the systematic approach. That is called whole system, holistic approach. So there is the one research in the United States. In 1995, Professor Martin Seligman done a research. He reviewed 45,000 research journals related to human happiness. Why human beings are not happy? He reviewed all the researches. And you know, 44,600 articles were written about the anger, depression, frustration, failure. Only 400 articles were written about the human happiness. So see how big the departure within us, our education system and research system. We want to happiness and we are looking the root cause of unhappiness. Is it possible to plant orange and seeking the mangoes? No, never. So positive psychology says that if you want to see the root cause of happiness, because happiness is always related with the emotions, if you threat someone and ask him to be happy, is that possible? No. If you reward and ask him to be happy, that is possible. And rewarded people can bring the changes. So, we need to find out the root cause of success in the system. What is the best in the system? Never mind, this is 5% or 10%, you can increase it. The treatment to deal with the strength and treatment to deal with the weaknesses is very different. So we, in Eastern world, our metaphor is like, asafalta hi safalta ka janani hai. So we are badly treated. Only success is the root cause of the success. Success can be the foundation of the success. So after the evolution of the Newtonian science, like the problem is evolved and that comes, because problem is the word that deals for the material science. अगर कोई मशीन खराब हो जाता है हम हैम्बर से उसको ठीक करते हैं क्योंकि मशीन में इमोशन नहीं होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है ठीक उसी तरह हमने साइंस का वो वर्ड सोशल साइंस में ला करके क्या कर दिया कोई प्रॉब्लम होता है तो हमने वहां फ्यूडलिस्टिक अप्रोच दिखाने शुरू कर दिया काम करो भाई अच्छा से नहीं तो तुम्हारी हम निकाल देंगे ऑफिस से और इस तरह के थ्रेट सहित के लैंग्वेज में हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय और वर्कर्स ज्यादा काम करें सो इमोशनली दैट इज पैराडॉक्सिकल So, appreciative inquiry believes in the whole systemic approach means it invites all people to vision for tomorrow. Agar hamare 3 crore people in Nepal and 126 crore people in India together dream how India and Nepal look like by 2020, what would happen? So together if we can vision has the power. Like Abdul Kalam Sahab ne kaha, the dream is that not seen in the sleep, dream is that doesn't let you sleep. Or Martin Luther King said, I have a dream. Gandhiji, he has a dream. So if we can cultivate dream with each and individual for next 5 years, that brings the positive action in the present. So there is the theory called positive image, positive action. So, हमारे शास्त्र में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम् means हम सब potential हैं हम सब काबिल हैं अगर हम मिलकर करें तो हम change कर सकते हैं so and spirituality means to create energy that is why appreciative inquiry says if you want to bring the positive transformation seek the root cause of success don't go behind the root cause of failure what you look is what you find हमारे शास्त्र ने कहा जो चाहा वो पाहा वो मिला हमको So the question you ask determines the answer you get. Where you think you are going is where you end up. So if you look for the problems, you will find lots of problems. If you see the success, you find more success. And importantly, if you have faith in your dream, you can achieve the miracles. Like James Watt, Albert Einstein, Baba Prajapati Brahma, Mother Teresa, they had faith in their dream and they achieved the miracle. So this is the process to apply this theoretical knowledge into the practice. So we need to discover the things. Where am I the best? How I can be the best? We need to discover it. Like spirituality, meditation help us to discover our strength. Dream, where I am going to next 5 years. So there is saying, if you don't know where you are going, it doesn't matter which road you take. So we need to do we need to have a dream and design. We need to give the structure of that dream and destiny. We need to make an action plan based on that dream, then we can bring the transformation. So there are some like evidences from like positive belief. Spirituality fosters the positive belief within us. In medical science, that is tested called placebo medical effect. That is believed that up to 66% disease can be cured by believing system. Positive inner dialogue. One of my mentor, Barbara Fredrickson, has done a research in North Carolina University, and she found that 2:1 ratio, 2 positive, 1 negative thinking is very much important for the healthy body, and 5:1 relation is very much important for the sound relation between two people. So positive feedback, that has 100% improvement in field. So only pure mind can give the positive feedback, and through the meditation we can create a pure mind. And positive conversation, the positive conversation inside the organization can create positive results, and positive attitude that can bring the, and meditation bring the positive attitude. So the area of appreciative inquiry and spirituality application is business, philanthropy, government, non-government, school, colleges, research center, bureaucracy, politics, private sector, family and personal life, anywhere. So the blending of appreciative inquiry and spirituality can create avalanche effect for the positive societal transformation through the personal transformation, and responsibility is ours. So Gandhiji said, "Which change you want to see in the world?" So now it is the time to act. Om Shanti. Thank you very much.
Thank you very much, most respected R.C. Lami Chanaji. Abhi main aamantrit karne ja rahi hu Rajyogini Brahma Kumari Ambika Behen ji se ki abhi future plans kya hai, aage ab wapas jaane ke baad kya karna hai, uske baare mein ab batayenge. She is the chief of the Vivipuram sub-zone of the Brahma Kumaris, and she heads the centers of the organization of this organization in southern parts of Karnataka state and parts of Andhra Pradesh, and she is also the national coordinator of Spark Wing. Most respected Rajyogini Ambika Behenji.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಮಾದರಣೀಯ ಜಯಂತಿ ದೀದಿಜಿ ಅವರ ಮಂಚ್ ಪರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹಮಾರೆ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿಗಣ ಅವರ ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಭಾಯಿ ಬಹನು ಅಭಿ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಆಗೆ ಕುಚ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಜೊ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೆ ಬಾದ ಆಸ್ ಎ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರ್ನೆ ಚಾಹತೆ ಹೈ और उसमें आप सबका जो कोऑपरेशन हम चाहते हैं हम आपके आगे रख रहे हैं. पहली बात जो आप 3 दिन से सुन रहे हैं, समा रहे हैं, मैं समझती हूं आप यहां से कुछ ले जा रहे हैं पक्का. तो इसमें पहली बात, थिंक अबाउट हाउ टू इनकॉर्पोरेट यूर लर्निंग इन यूर डे टू डे लाइफ. जो कुछ भी आपने सुना है, पहली बात हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने जीवन को सशक्त बनाते हुए वैल्यूज इन रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, ये सारी बातें आप समझ भी गए, अनुभव भी किया. इसके बाद ये ना सोचे कि रिसर्च में ये बातें हम कहां तक ला पाएंगे, हमारे समय नहीं है. लेकिन रोज अपने लिए समय जरूर निकालना है. क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हार्बिंजर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का भी ये जो विजन एंड मिशन है कि एक नवीन सुदृढ़ मौल्याधारित समाज को स्थापन करने के, जिसके अंदर सभी मानव श्रेष्ठ आचरण के आधार से सुख शांति से हार्मनी से जिएंगे, उस समाज को लाना है। तो उस समाज में हम सब हैं, तो हम हर एक यहाँ भगवान की जो महामंत्र है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जो हमारे स्व परिवर्तन में हम स्वयं को सशक्त बनाए, हमारे जीवन में वैल्यूज लाए। मैं कल भी आपके आगे रख रही थी कि कैसे वैल्यूज इन रिसर्च, हमारी जो इटर्नल वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, वो कितनी जरूरी है। सोशल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज हम अपने मान्यताओं के आधार से हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम जिस भी कार्यक्षेत्र में करते हैं वहां जो त्रुटियां आती है, इसका कारण रिसर्च में भी हमारे ग्लोबल विजन न होने के कारण, कुछ प्रेशर्स के कारण, कुछ पॉलिसीज के कारण जो हम निर्णय लेते हैं उसका नुकसान मानवता को कैसे होता है, मैं आपके आगे रखा भी और क्लियर भी किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप रोज जरूर कुछ टाइम अपने लिए निकालेंगे टू कम आउट विथ इटर्नल वैल्यूज नेचुरली इन योर वर्क फील्ड। आप किसी भी फील्ड में रही है, लेकिन अपने को अंदर से पावरफुल बनाने के लिए ये प्रैक्टिस के लिए टाइम जरूर देंगे। और सेकंड, हमारी जो प्लान है कंडक्टिंग सेमिनार एंड ये जो कॉन्फ्रेंसेस है सर कॉन्फ्रेंसेस यूनिवर्सिटी, फॉर दैट यू कैन स्टे इन टच विथ लोकल बीके सेंटर्स आर हमारी हेड कोऑर्डिनेटर जो है इधर हेडक्वार्टर का श्रीकांत भाई से संबंध रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे कई बार ये जो भी कॉन्फ्रेंसेस 8 कॉन्फ्रेंसेस चले उसके बाद जो भी यहाँ आए उसका विशेष उद्देश्य को समझ के वहां जाने के बाद कई ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस जो रखा है उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम देखते जा रहे हैं। और आप हमारे सुशील भाई से भी सुना कैसे डीआरडीओ और निमैंस या किदवाई वहां जो हमारी कोलैबोरेशन वर्क जो चला यहां आने के बाद, उन्होंने सोचा कि ये सारी जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सबको मिलना चाहिए, सबके जीवन में आना चाहिए, जिसका लाभ हमारे समाज को हो, देश को हो और राष्ट्र को हो। इसी का ध्यान में रखते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ये किसी भी प्रकार का प्रोग्राम रख सकते हैं। और तीसरी बात, इनिशिएटिंग कोलैबोरेटिव वर्क इन योर डिसिप्लिन और इन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई कहते हैं मैथमेटिक्स का हम स्पिरिचुअलिटी से क्या करें या इकोनॉमिक रिसर्च पे हम है तो क्या करें। ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो कोई भी फील्ड में सीमित नहीं है। एजुकेशन में हमारा वैल्यूज के आधार से एजुकेशन जो चल रहा है इसमें जो डिग्री दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स में भी हमारा मॉरल मैथमेटिक्स जो है वो बहुत सुंदर है। हम कर्मों को कैसे माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं उसको अगर कोई समझे उसका जीवन ही परिवर्तन में आ जाए। इकोनॉमी भी उसमें स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी को लाएंगे, उस इकोनॉमी को कैसे यूज किया जाए, ये सब समझ के जीवन में लाना, अपने जीवन में ही नहीं सारी समाज को परिवर्तन उनकी जीवन को बनाने के लक्ष्य रखते हुए एक कोलैबोरेटिव वर्क हम करेंगे तो उसका लाभ सारे समाज को होगा। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं, यहाँ जो भाई आए थे कल, कुछ एमओयू भी हुआ है कईयों के साथ, और आप सबसे भी हम अपने बात रखते हैं, आप कोई भी अपना ये कोलैबोरेटिव कार्य के लिए अपने हाथ बढ़ा सकते हैं स्पार्क विंग के साथ। चौथा जो है क्रिएटिंग ए लैब सेटअप इन माउंट अबू. योर इनपुट्स, इनसाइट्स, आइडियाज, सपोर्ट्स आर वेलकम. हमारे ज्ञान सरोवर में जो ऑफिस है, स्पार्क ऑफिस, वहां लैब बना है. लैब में कल कुछ वैज्ञानिक बैठे थे, उन्होंने अपने कुछ इनपुट्स दिया कि कैसे यहां जो सब वर्ग के, सब लोग और सब धर्म के आत्माएं आते हैं, उनकी भिन्न भिन्न मान्यताएं होती है, भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन ये राजयोग एक विशेष साइंस है. जिस राजयोग से बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आर सीन. अब तक जो भी रिसर्च हुआ है उनमें जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छा है. उसमें मैं बेंगलोर की दो बातों को आपके आगे रखना चाहती हूँ. सिंपल बात जो अजय भाई भी आपके आगे रखा होगा कि एक मिनट की मेडिटेशन भी, जस्ट वन मिनट मीन 60 सेकेंड, विथड्रॉइंग सेल्फ फ्रॉम द बॉडी, जस्ट मेकिंग यूर माइंड स्टिल एंड स्टेबल एंड पुटिंग ए फुल स्टॉप, दैट गिव्स ए लॉट ऑफ चेंज फ्रॉम बीटा टू थीटा वेव्स. इतना मन शांत हो जाता है जिसके अंदर आपकी डिसीशंस, और कभी उस घड़ी में आपका मन डिस्टर्ब हुआ होगा तो आपकी जो अप्रोच ही चेंज हो जाता है, डिसीशन चेंज होता है, अपने संबंध में भावनाएं परिवर्तन हो जाता है. इतने फर्क इस राजयोग से पाया गया है. उतना ही नहीं, जो कैंसर इंस्टीट्यूशन में, जो किदवाई में जो हम कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन के बाद उनका जो स्टिचेस खुल गया, तो वो मेडिटेशन कर रहे थे रोज आकर के. उनकी स्थिति इतना अच्छा था, उस घड़ी जब खुल गया वो डरे नहीं. उन्होंने कहा कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, मेरी ये शरीर का ये स्टिचेस खुल गया. वो पकड़ लिया, पकड़ते डॉक्टर जब आया, ये चिल्ला नहीं रही है, छींक नहीं रही है, क्या बात है. तो उन्होंने देखा कि कितना शांति और प्रेम से उन्होंने कहा ये ऐसा हो गया है, ठीक है. पेन किलर्स भी नहीं दिया. डॉक्टर्स ने कहा आपको चाहिए? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आत्मा हूँ. डॉक्टर्स को उन्होंने पढ़ाया, मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है, आप जो कुछ करना है करिए. तो उनकी जो बाद में 15 दिन के बाद देखा गया कि उनके अंदर जो शांति था, अपने जो अंदर की किसी भी प्रकार की स्ट्रेस फिगर जो अपने को वो हैंडल कर रहे थे, उसके कारण उनकी जो जो ये जो बीमारी है उनका रिकवरी है, वो दूसरे पेशेंट्स के कंपैरिजन में बहुत फास्ट था एंड विदाउट पेन किलर्स. तो ये देखकर के डॉक्टर्स हैरान हो गए, और डॉक्टर्स आज रोज वहां जो भी नर्सेस है डॉक्टर से वो रोज मेडिटेशन पे आते हैं, करते हैं. मैं ये आपके आगे क्यों रखा, क्योंकि अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस एंड टेंशन, डेली थोड़ी थोड़ी जो स्ट्रेस है ना, टेंशन है, वो हमारी सेल्स को डैमेज करता है, वो मर जाता है डेड सेल्स. तो कैंसर इज नथिंग बट डेड सेल्स फॉर्मिंग ए ट्यूमर एंड दैट लीड्स टू कैंसर. तो इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को शांत रखना हर सिचुएशन में, और सदा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. तो ये ध्यान में रखते हुए हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय यहाँ जो लैब बना रहे हैं, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य है. इस लैब से ऐसे रिजल्ट, राजयोग इज इन यूनिक मेडिटेशन एंड गॉड टॉट मेडिटेशन विच हैज ए वेरी पावरफुल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज बिहाइंड इट, जिस कारण से राजयोग का इतना जो ऊंचे रिजल्ट है हम देख पा रहे हैं. तो ये लक्ष्य रखते हुए हम जो लैब कर रहे हैं उसमें आप सबको वेलकम है. आपके आइडियाज और सजेशंस भी वेलकम है. और पांचवी लास्ट वन है, एज यू हैव एंजॉयड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस, शेयर दैट विथ योर कोलीग्स एंड विथ योर फैमिली मेंबर्स, जूनियर्स और सीनियर्स. यहां से जाने के बाद जरूर आप ये बातें अपने लोगों से शेयर करिए. जो भी खुशी की बातें, प्राप्ति की बातें होती है, फायदे की बातें होती है, हम जरूर अपनों से शेयर करते हैं. तो ये जो ज्ञान आपने पाया, और इस ज्ञान में क्या विशेषताएं है, कितनी क्लैरिटी है, वो आपने सब आप सबने समझा। इन बातों को अनुभव के आधार से अपनों से शेयर करेंगे, वो लोग भी अपने जीवन को बना पाएंगे और सदा एक सुखी जीवन, निश्चिंत जीवन, एक सशक्त जीवन जीते हुए अपने जीवन को सदा निरोगी जीवन अनुभव करते हुए हम सब एक नया दिशा, नए लक्ष्य को लेकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाए, ताकि हम एक सुदृढ़ मौल्याधारित नवीन समाज को हम सब मिलकर के ला सके, ये आशा करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। ओम शांति।
थैंक यू सो मच आदरणीय अंबिका बहन जी। जब हम अपने जीवन को सशक्त बनाते हैं, ना केवल हम एफिशिएंट हो जाते हैं, लेकिन हमारे संबंध संपर्क में जो आते हैं वो भी प्रेरणा लेते हैं। तो इसीलिए निरंतर या हर रोज एटलीस्ट कुछ मिनट्स हम मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने बहुत खूब कहा था एक बार कि इफ आई हैड 8 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 आवर्स टू शार्पन माय एक्स। तो 6 घंटा वो शार्प करने के लिए देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, इट इज लाइक शार्पनिंग अवर एक्स ऑफ आवर माइंड्स, ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन अवर इंटेलेक्ट्स। तो अगर मेडिटेशन के बिना कार्य करते तो इनएफिशिएंट हो जाते। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन लाइफ, तो ना केवल रिसर्च में लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी बहुत बड़ा एक योगदान रहता है मेडिटेशन का। अभी हम चाहते हैं कुछ लोग अपना फीडबैक्स दे सकते हैं मंच पर आकर के, या फिर माइक दे सकते हैं। हाँ जी, वहां ही माइक दिया जाएगा आपको, कॉर्डलेस माइक दिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का फीडबैक, आप यहां आए, आपको कैसे लगा यहां आकर के, तो उसके बारे में आप बताएंगे। माइक दे रहे हैं, एक मिनट।
ओम शांति। डिग्निटरीज on dais and my beloved brother and sister attending this conference from the different parts of the country as well as from the Nepal. This is the first time that I am attending this particular conference, and this inspiration was created by me, Swami Shankar Sahaji from Chhapra, who has repeatedly asked me to attend the conference. I said to him that I am not going to attend the conference for seeing the Mount Abu, because I have already visited the place, but if I get or share my opinion in this particular conference, then I shall be benefited and I may have the opportunity to say my ideas to this August gathering. So what I want to say, the spirituality, science and spirituality, the harbingers of a new world order. So in this particular context, on the one side we have the scientific development. The last century was the century of globalization and computerization, and this century is the century of knowledge revolution. So how this knowledge is to be inbuilt into the process of value system, which is very, very essential, because I consider the value system as a checklist. What is good and what is bad? Sukhasya mule dharma. Dharma is righteousness. Dharma is purity in our thought and effectiveness in our action. But the world order, a new world order, what is new world order? All have said about the destruction. The destruction. But I consider this technological innovation, to my mind, would be a creative destruction for the world economy in the years ahead. Because we have been confronted with each other, if we take into consideration the space revolution between these two superpowers, the USA and the USSR, we find that one superpower has gone, Russia. Because Russia has not so money power that they can make any experimentation on space. Entire East European countries has collapsed. One superpower is behind. Now this technological confrontation, we are confronting, each nations are confronting with each other, making the world into two separate wings, and that is the sunrise industry, those who are using the sophisticated technologies, and the sunset industries, they are not in a position to make use of the sophisticated technology due to scarcity of capital. And making no balance between the sunset and the sunrise industry, and the recession is into the process knocking the door. So I want to say in this particular thematic condition, on the other hand, if we say, see, that in 2025 to 2040, what is the youth population, we would be the topmost countries in the youth population. So, demographic dividend as well as a demographic disaster. So, my issue, question is that how to use this science and this spirituality, a particular coordination, a particular linkage, a particular strategic point of action so that those youth can be used as a dividend, because the jobless education,
okay,
by means of stockless, just a minute, say, don't disturb me. Jobless education by means of stockless universities degrees, making a disastrous point for our youth. So how we would exploit our youth strength, and if we would not in a position to use our human capital to strengthen our youth, our entire dream for the superpower to establish ourselves will not be established. So my point is here, my submission is here to the August gathering, as well as the dignitaries on dais, and particularly the Spark session, to make a research on how can we make science and spirituality in a most coordinated way, so that in future we can have a great human value in terms of the youth of our nation. Thank you very much for giving me this opportunity.
Thank you.
Feedback. So, I have a great pleasure that what I am getting out of attending this seminar is a great experience, because the value system, which is the core, and to my mind this value system has four parameters. First of all, we must have the positive feelings. That would give us a new vision, and that new vision would make our value system in the positive line of direction,
and that positive line of direction change our behavior. So the positive change in behavior is very, very important. And I am very much thankful to the great sisters of this organization who have given me a great knowledge about how the spiritual strength, by transforming myself towards the goal of success that we can have. I am very, very thankful. Time is limited, so I am not in a position to say something.
जो भी अभी फीडबैक बोलेंगे तो अपना पर्सनल अनुभव केवल तीन दिन का प्लीज एक दो मिनट में ही पूरा करेंगे.
ओम शांति.
यहाँ आकर के कैसा लगा? सिर्फ वही अनुभव. ओके.
हम यहाँ पहली बार आए. मैं तो हमारे रीजन के जो शांताराम भाई और संध्या दीदी इनके बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम तो जी वर्ल्ड देखते हैं लेकिन यहाँ आकर हमने जी वर्ल्ड देखा. जी यानी गॉड. यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की डिसिप्लिन, यहाँ की स्वच्छता, शांतता, पवित्रता, इसका हमने बहुत अनुभव किया. और मैं तो हमारे जलगांव जिले की ऑन बिहाफ ऑफ जलगांव डिस्ट्रिक्ट आई थैंकफुल फॉर मैनेजमेंट एंड आई विल शेयर दिस इन माई रीजन. एंड first time I experience here what is God, what is Paramatma. हमने तो सुना था पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में बैठा, तीजा राम जगत पसारा और चौथा राम सबसे न्यारा, ये हमने यहाँ जान लिया. थैंक यू.
बहुत खुश, बहुत खुश.
ओम शांति. टू डिग्निटरीज ऑन द डायस, डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज माय सेकंड विजिट हियर. इन फेब्रुवरी दिस ईयर आई कम फॉर द बाबा मिलन एंड नाउ अटेंडिंग दिस एसएआर कॉन्फ्रेंस एज वेल. देर आर लॉट ऑफ टेकअवेज फॉर मी पर्सनली. आई एम बी के राजेंद्र. आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, न्यू technology where a lot of focus is there nowadays. I work for a US based one of the US based IT companies in Bangalore. First of all, the two programs which really enriched my experiences are the creative Raja Yoga and by BK Aditi, I think, and the concert, meditation concert by Brahma Kumari Sridhyanka. They were so good. I could feel the energy inside me, the group meditation and the kind of vibrations that it created. It was fantastic. And some of the things which I feel I could take to my work is some of the sessions, plenary sessions, the brain and leadership, science of neuro leadership, researchers as change agents, and some of the paper presentations were really good. And I think there is a lot of work going on which is going to impact the society as a whole, and I'm personally thinking on how I can contribute for the next session of next year's session, what research I can do in my capacity as a data scientist. Can I go and check for the how spirituality is being discussed on Twitter, for example, on Twitter and social websites, and how the social websites can be used to spread the message, etc. So I am taking away a lot of things from here. It was a fantastic, enriching experience. I hope it is the same for all of us here. Thanks.
Very good.
Om Shanti. Main कर्नाटका गुलबर्गा से हूँ. यहाँ पर मुझे अपने भाई लोग लेके आए. ऐसा तो मुझे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत थोड़ा जानकारी था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ भगवान को हम जानते थे, बहुत दूर से जानते थे, लेकिन इस तीन दिन के सेमिनार में हम उस कुदरत से, हम उस सच्चाई से इतना करीब हुए कि मानो इस करीबी के लिए इस तीन दिन का जो सेशन है बहुत हमारे लिए योगदान रहा। और इस मंच से हम ये लेके जाएंगे कि ध्यान करने से भगवान के करीब कितना जल्दी जा सकते हैं हम, और इससे सुख शांति और कितना हमारे को एक मुक्ति धाम के लिए करीब जाने के लिए ये हमारे लिए एक योगदान है। और मैं यहाँ के डिसिप्लिन जो तीन दिन में देखा, जहां पर हमारे घर में कोई 10 लोग आए तो हमको मैनेज करने का नहीं होता, लेकिन यहाँ का जो भोजन व्यवस्था, स्पेशली भोजन का मैं बात करूंगा, क्योंकि भोजन एक अन्नदान है और यहाँ पर इतना जो अन्न है वो प्रसाद के रूप में जो हमारे को मिला और जो बनाने का जो एक स्वाद था वो क्या है, खुद भगवान ही हमारे को बनाया और हमको दिया, ये हम महसूस करें। और यहाँ पर जो सब जो सिस्टर्स हैं उनको जब देखते हैं तो हम देवी देवताओं को देखे सरका होगा, ये मैं महसूस किया। धन्यवाद।
ओम शांति। सबसे पहले तो आप सब का धन्यवाद, उन बहनों का जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। मैं दिल्ली से आया हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे ऑफिस वालों ने कहा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, और उन्होंने कुछ लोगों का हवाला दिया कि वो लोग दूसरे ही दिन भाग के आ गए थे। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि नहीं आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा। वो नहीं आ पाई क्योंकि बच्चों का एडमिशन शेड्यूल निकल गया 9 तारीख से। सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ देखा, अध्ययन तो हमने बहुत किया, ज्ञान कोई नया नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो गीता का उपदेश है वो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, हमें नहीं दिया था। हमारे लिए कृष्ण वो है जिसने हमें उपदेश दिया और हमें कर्म पथ पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, जिससे हम और हमारे साथ के लोग लाभान्वित हुए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि हम अवतार नहीं लेंगे या और कोई देवता प्रकट नहीं होगा या कोई दिव्य आत्मा नहीं आएगी। जब गुरु नानक जी आ गए, ईसा मसीह आ गए, गौतम बुद्ध और महावीर आए, उसी तरह ब्रह्म बाबा आए हैं। नई बात हमें ये लगी उन सबसे अलग कि उन्होंने आत्म ज्योति की बात की। हम भौतिक साइंस, मेटेरियल साइंस पढ़ते हैं और हम वेव थ्योरी पढ़ते हैं। हमने देखा है कि डाल्टन थ्योरी के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम टूटता गया, मेसन आ गया, और अब जो है गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है, और अंत में वो देख रहे हैं कि एक ज्योति ही दिखती है। एक्सरे क्या है, एक ज्योति है। उसी ज्योति को अपने अंदर जलाने की बात यहाँ की जा रही है, जो हमारे लिए नई है कि वो चीज हमारे अंदर है जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड रियलिटी, साइंस एंड डेवलपमेंट, इस सब पर हमने बहुत प्रोग्राम किए, डिस्कशन किए, इंटरव्यूज किए, लोगों को सुनाया, लोगों से सुना। ये हमें बहुत प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित हमें ये की है कि यहाँ का मेडिटेशन सेशन जो हमने अटेंड किया है। हम जिस कमरे में थे वहाँ एक ब्रह्म कुमार थे, वो उत्तराखंड से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे। उन्होंने हमें प्रेरित किया 4 बजे उठने के लिए। वो प्रेरणा हमें अच्छी लगी। जब हम आए, जहाँ हमने 3 दिन अटेंड किया, तो 2 दिन में मैंने देखा कि जब मैं आंख बंद करता था तो मैं एकदम अंधेरे में चला जाता था। मैं बातें तो सब सुनता था कि हमारे अंदर आत्मा है, उसको इस तरह से है, दिव्य ज्योति है, ये सारी चीजें सुनता था। तो आज हमने जब सुना, तब मैंने इन बहन से सुना कि आंख को बंद नहीं रखना है, आंख को खुला रखना है, सामने देखना है। तो मैं बहुत सारी नई चीजें यहाँ देखी है, मैंने सीखी है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों की भ्रांतियों को दूर करूं जिन्होंने मुझे कहा था। और मैं ये भी चाहूंगा कि मैं इससे सक्रिय रूप से जुड़ूं हर तरह से, तन मन और धन से, क्योंकि वेद का एक श्लोक है कि पुरुषार्थ के लक्षण में कहते हैं कि सैकड़ों हाथों से अर्जन कीजिए और हजारों हाथों से दान कीजिए। मतलब आप अपने आप को इतना सक्रिय कीजिए कि जो 100 लोग अर्जन कर सकते हैं उतना आप कीजिए, लेकिन दान भी कीजिए जितना हजार लोग करते हैं। आज की समस्या ये है कि लोग अर्जन करते समय तो हजार हाथ वाले हैं, लेकिन दान करते समय मुठियां बंद हो गई है। तो इसीलिए क्लेश का ये भी एक कारण है। ABCD सीखने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, पति पत्नी हर मकान दुकान बन रही है, थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया, एक सेंटर खोल दिया, ब्यूटी पार्लर खोल दिया, लेकिन इतना कमाने के बाद खर्च कहाँ कहाँ किया, समाज को क्या दिया। ये चीजें की प्रेरणा यहाँ मिलती है, ये मैंने देखी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर हमारे गांव गांव में खुलनी चाहिए,
उन
लोगों को आने को मिलने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद।
ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वो बहन को दे दीजिए।
ओम शांति। महाराणा प्रताप की इस शूर वीरभूमि से ब्रह्मा बाबा ने जो कार्य किया है उसके लिए हमें बहुत ही एक आनंद यहाँ आकर मिला। ये भूमि से ब्रह्मा बाबा ने जो विश्व शांति के लिए एक संदेश मिला है, ज्योत से ज्योत जलाते जाओ, ये जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है, विश्व शांति के लिए एक बड़ा महत्व यहाँ पे निर्माण होता है। हमें बहुत खुशी हुई, हम पहली बार यहाँ पे आए, हमने ये सुना था लेकिन हमारे मन में इसके बारे में अनेक प्रश्न थे कि बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही संभालना पड़ता है, लेकिन यहाँ आत्मा का पूजन यह स्थान मिला है तो यहाँ आने के बाद हमें फिर ऐसा लगता है कि फिर आए। स्वर्ग कहाँ है तो स्वर्ग माउंट आबू में ही है, माउंट आबू में। धन्यवाद।
महोदय एक मिनट, मैं बिहार से पटना से आया हूँ, मेरा नाम रामनाथ गुप्ता है। चूंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, पब्लिक लाइफ में हूँ, उसके तजुर्बे पर मैंने कुछ यहाँ देखा। देखने में पन्ना पलटते पलटते मैं तुलसीदास के तरफ चला गया, जिन्होंने नारी पर क्या क्या कह दिया था। यहाँ पर नारी की शक्ति और कैपेबिलिटी भगवान को प्राप्ति करने के दिशा में, आध्यात्मवाद के तरफ पहुंचाने की दिशा में तो सारे प्रवचन हुए, लेकिन जैसे ब्रह्म बाबा को भगवान ने सपना दिया था, मैं भी पब्लिक लाइफ में सोचते सोचते यहां तक सोच गया हूं कि अब ग्लोबल विलेज हो गया है तमाम दुनिया। पंचायत में नारियों को पंच बनाया जा रहा है, स्टेट में मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, देश में नारी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, और मैं आप लोगों के कृपा से देख रहा हूं कि अब ग्लोबल विलेज हो गया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात हो रही है। वहां मैं यहां की व्यवस्था और प्रबंध को देख के समझ रहा हूं कि दुनिया हेडेड बाय वोमेन होगा और वहां के प्रथम वर्ल्ड हेड इस संसार की शायद कोई बहन होगी, मैंने यही समझा।
अच्छा लास्ट लास्ट आप बताएंगे तो फिर।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड डेलीगेट, ऑल माय पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्गेनाइजर कमिटी, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रोवाइडिंग मी टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स इन दिस स्टेज। आई गॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस स्टेज बिकॉज आई वॉज willing to know that how the life of Baba, Brahma Baba, that I got, and how the what is the cause of saying the mumma that I got, and so many things I got from this stage. And if the my students they ask what is the heaven, I will tell the Mount Abu is heaven. And we got so many love and affection from this area, and we got so many help and so many respect from this Mount Abu, and all the people are so helping, all the people are so loving, and I got so many things from this Muan, and I am teacher, sorry, I want to express my own feelings also, because I am Dr. Indira Sheth from Nursing Campus, Maharajganj, Kathmandu, Nepal, and I was willing to present my research report, because my research title is Health and Social Consequences of Trafficked Women. Trafficked Women. Who are trafficked, and after they bring back of the brothel, how they suffer from the community interaction. And because I am the nurse, I was working in so many hospitals, and so there were so many patients are admitted in hospital, and their history was only the infection, HIV AIDS, and so many things. And I was willing to do the research about their problem. So I did the research in Kathmandu, Nuwakot, and I got that because health and social interaction is so many related, and social science and spirituality also related to health, because I heard that the yoga will treat the disease, and that's why I was willing to express my feelings, because trafficking problem is also the spirituality also affects the spirituality.
Okay, thank you so much. Thank you so much.
मैं अनिल केसरी पटना से आया हूँ.
जयंती बहन,
मैं अनिल केसरी पटना से आया हूँ, और इस सफल आयोजन के लिए मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ, मंच पे आसीन सभी अति विशिष्ट जन को प्रणाम करता हूँ, और इस सभागार में उपस्थित हमारे साथियों मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ. गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब किसी का कुआं हो, किसी की बाल्टी हो, किसी का रस्सी हो, कोई पानी पी रहा हो, कोई पानी पिला रहा हो. तो यहाँ हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा इस टीम वर्क को, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ. आप सभी को बधाई के पात्र हैं, आने वाले भी और आयोजक भी. मेरा ये निवेदन है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रकृति केंद्रित विकास की भी बात होनी चाहिए. आज मानव केंद्रित विकास हो रहा है, हम देख रहे हैं, और मानव केंद्रित विकास हम लोगों को नरक की तरफ ले जा रहा है. इस आयोजन में या आगे कभी आप आयोजन करें तो उसमें प्रकृति केंद्रित विकास का समावेश होना चाहिए. धन्यवाद.
ओके, ये लास्ट है आप, इसके बाद कोई भी ना आए प्लीज, अभी टाइम होता जा रहा है, और जयंती दीदी से हम सभी सुनेंगे लास्ट. ओके, संक्षिप्त में बताएंगे.
मैं पूर्णमासी साहू हूँ, ओडिशा की निवासी हूँ. मेरे साथ एक मिराकल हुआ वहाँ 13 सितंबर को, और मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. एट द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 13 सितंबर मेरे सीवियर चेस्ट पेन हुआ. मैंने सोचा बाबा का द्वार में मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझको ट्रॉमा केयर सेंटर को ले गए. भाई बहन में मेरे साथ मेरी बेटी थी, वहाँ पर सब टेस्ट वगैरह ईसीजी वगैरह हो गया, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ अच्छी आती है. मैं वहाँ पर पुनर्जन्म पाकर लौट रही हूँ ओडिशा के. थैंक यू.
बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हम आदरणीय जयंती दीदी से सुनेंगे. सिस्टर जयंती हैज बीन ट्रैवल वाइडली एज अ स्पीकर, ब्रॉडकास्टर एंड एमिसरी ऑफ पीस. सिस्टर जयंती इज यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी एंड असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग द यूनिवर्सिटीज एक्टिविटीज इन 80 कंट्रीज. She is the main representative of the Brahma Kumaris at the United Nations Geneva. She has coordinated several projects in connection with women, development and environment and youth. Sister Jayanti has been an advisor to the Council for a Parliament of the World Religions and advisory committee member of the International Interfaith Center. She is a member of the Executive Committee of the World Congress of Faiths. Sister Jayanti's work involves spiritual counseling, teaching and translating. Sister Jayanti has a unique ability to impart deep spiritual truths with the utmost clarity. Now we would listen to most respected Sister Jayanti.
Om Shanti. Respected guests, brothers and sisters, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके मन की लहरें मैं सुनती रही और मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कई बातें समझी है, अनुभव की है और साथ लेके जा रही हैं. बाकी साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं कुछ शब्द बताने चाहेंगी. आप लोगों ने अपनी संस्था का इतिहास भी शायद सुना होगा, perhaps in essence. परंतु उसमें आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि किस तरह से बहनों ने और साथ साथ कुछ भाई भी थे, परंतु उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी जो गहन तपस्या की वो सारा था एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. उनकी लेबोरेटरी थी अपना ही मन और बुद्धि. और जिस तरह से कोई साइंटिस्ट होता, हर बात को ऑब्जर्व करता, ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ डिडक्शंस होते और फिर वो एक्सपेरिमेंट करते कि कहां तक इट्स रिपीटेबल, फिर वो रिजल्ट्स देखते और रिजल्ट्स के आधार पर जो उनका डिडक्शन था उसको या तो स्वीकार करते या तो उसको बदल देते रिजल्ट्स के आधार पर. और फिर रिजल्ट्स के आधार पर ही एक्सेप्टेंस और फिर बिलीफ, फिर वो बात वो मानने लगते हैं. तो इसी तरह से ही जो आत्मा परमात्मा हर प्रकार से जो बातें परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्हें सुनाई, जैसे आप लोगों ने कईयों ने उसका वर्णन किया, कुछ नई नई प्रकार की भी बातें हैं. और उन्होंने जो अपने अंदर ही मन और बुद्धि में एक्सपेरिमेंट करके देखा, उस आधार पर ही आज जो हम राजयोग की शिक्षाएं स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं, वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह से ही चला है. तो स्पिरिचुअलिटी का मैं समझती हूँ कि जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है उस आधार पर ही यहाँ स्पिरिचुअलिटी का हम अभ्यास कर रहे हैं. उस हिसाब से मैं आपको एक और आजकल की बात सुनाती हूँ. वैसे हिस्ट्री के हिसाब से तो 20 वर्ष तो आजकल ही कहेंगे, तो तभी मैं आजकल की बात कहती. क्यों? क्योंकि आजकल करीब 20-25 साल पहले एक नई प्रकार की साइकोलॉजी का आरंभ हुआ, वो था पॉजिटिव साइकोलॉजी. उसमें आप लोग जानते होंगे कि जो करीब 100 वर्ष से अधिक साइकोलॉजी चलती रही वो सारी थी नेगेटिव साइकोलॉजी. मतलब जो भी नेगेटिव मानव के एक्सपीरियंसेस है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उनका वो सारा खोज करते रहे और उसका वर्णन करते रहे और उसको एडजस्ट करते रहे. परंतु पॉजिटिव मानव के जो गुण है, टेंडेंसीज है, पर्सनालिटी है, उसका नहीं हो पाया. तो एक बहन है जिसका नाम है बाबरा फ्रेडरिकसन, तो वो अमेरिका के यूनिवर्सिटी में इसने सारा रिसर्च किया था और उसको टेम्पलटन प्राइज भी मिली थी अपनी रिसर्च पर, तो उसके साथ बातचीत की थी। तो उससे मैंने पूछा था कि जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी इतनी सुंदर है, इतना समय क्यों लगा, इतने वर्षों तक नेगेटिव साइकोलॉजी की स्टडी होती रही और अभी बस कुछ चंद दिनों से ही पॉजिटिव साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आरंभ हुआ। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, कहा कि जबकि नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, वो जैसे कि एक हैमर की तरह आते हैं, एक हथौड़ी की तरह, और उनका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट भी होता और उनका बहुत लंबा समय तक भी इम्पैक्ट चलता। तो हम उनको मेजर कर सकते थे, उनका सारा एग्जामिन कर सकते थे, उसकी बातें सारा समझ सकते थे, परंतु जो पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस है वो बहुत सूक्ष्म है। एक तो सूक्ष्म है और दूसरा ट्रांसिएंट, चंद घड़ियों के लिए आते, अभी आए और फिर समाप्त हो गए। तो उनको अब तक हम इतना मेजर नहीं कर सके, एग्जामिन और एक्सप्लोर नहीं कर सके, परंतु आजकल जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, हमारे पास ऐसे टूल्स है जिस आधार पर ये अभी हम सब कुछ समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया बहुत डिटेल में, मैं तो आपको कुछ चंद शब्दों में बता रही हूँ, परंतु उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस है, जैसे कि प्रेम है, खुशी है, आनंद है, विश्वास है, रिस्पेक्ट है, आप लंबी लिस्ट भी बना सकते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस की। तो कहती थी कि ये सब जो अपने अनुभव की बातें हैं, आप सोचो कि वो आते हैं, थोड़े समय के लिए होते, फिर गुम हो जाते। आप सोचो कि खुशी मेरे पास सदा रहती है, आती है, फिर कुछ न कुछ कारण बनता और छूट जाती। तो इसी प्रकार से यदि हम कुछ और रिसर्च करके देखें कि ये पॉजिटिव फीलिंग्स का एक तो इम्पैक्ट क्या होता है अपने शरीर के ऊपर, तबीयत के ऊपर, अपने मन की स्थिति के ऊपर, संबंध के ऊपर, कार्य व्यवहार के ऊपर, समाज के ऊपर, तो जब हम ये सारा रिसर्च करते हैं तो एक एक कैटेगरी में हम देखते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग्स का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता। मानो कि आप एक घड़ी के लिए भी क्रोध करो, आपके तन के ऊपर, तबीयत के ऊपर क्या इफेक्ट आता, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा, एड्रेनलिन ऊपर चले जाएंगे, आपका दिल धड़कन फास्ट होने लगेगा, आप जानते हैं क्या क्या होता। और यदि 5 मिनट का क्रोध आप करो, उसका जो शरीर पर इम्पैक्ट होता कम से कम 1 घंटा लगता उसको फिर दोबारा होम्योस्टेसिस होने में, कुछ लेवल पर आने में। तो नेगेटिव का तो हम जल्दी देख लेते, पॉजिटिव का इतना जल्दी हम नहीं देख पाते, परंतु इम्पैक्ट इतना ही गहरा होता। आप एक घड़ी के लिए मन को एकाग्र करके शांत में बैठो, उसका आपको दिल को आराम मिलेगा, न सिर्फ मन को सुकून मिलेगा परंतु दिल को भी आराम मिलेगा। तो टोटली पॉजिटिव फीलिंग्स का, इमोशंस का जो तबीयत पर असर आता है, तबीयत भी हमारी और अच्छी बन सकती, और ही मजबूत बन सकती। मन पॉजिटिव फीलिंग्स का तो आप सोच सकते हैं कि मन हमारा किस तरह से प्रफुल्लित रहता यदि हम वो अच्छी भावनाएं रखते हैं आदाद। यदि हमारा मन ठीक तो फिर संबंध हमारा कैसे होगा, बहुत ही सुंदर, और फिर हमारा समाज के प्रति भी क्या भावनाएं होंगी, पॉजिटिव इनपुट होगा, हमारा कारोबार, हमारा व्यवहार बहुत एक अच्छा एफिशिएंसी से चलेगा। ऐसे नहीं कि मन को आपने खुश रखा तो फिर आपका कारोबार कुछ नीचे ऊपर होगा, बिल्कुल नहीं, आप मन को ठीक रखो तो और सब बातें उसके कनेक्शन से ठीक हो ही जाती। परंतु ये मैं स्पिरिचुअलिटी के अनुभव से नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको रिसर्च के आधार से, पॉजिटिव साइकोलॉजी के रिसर्च के आधार से ये फैक्ट्स बता रही हूँ। और हाँ, ये तो सही बात है, जिन्हों को कुछ आध्यात्मिकता का कुछ क्षण भी अनुभव होता वो भी कबूल करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि पॉजिटिव फीलिंग्स बेशक ट्रांसिएंट होती आती है और जाती है, परंतु हम क्या करें उनको और स्थायी रखने के लिए। तो बहन ने कहा उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कई बातें ट्राई की, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। अच्छी चीज खाने को होती है, अच्छा चलो आपको जलेबी अच्छी लगती, आप जलेबी खाएंगे, एक खाएंगे तो मन करेगा दोबारा भी खाएं, चलो दो भी आपने खा लिया तो मन बड़ा खुश रहेगा, आपने तीन खा लिया, पांच खा ली, फिर आपकी तबीयत की स्थिति क्या होंगी, तो फिर आपके मन पर उसका क्या प्रभाव रहा, जो उस घड़ी की खुशी थी, सुख था, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब कि एक्सटर्नल चीजें की कोई भी बात होंगी, आपने कुछ सनसेट देखा, मन बड़ा खुश हुआ, परंतु फिर बादल आ गए, फिर आप कहां शहर में है जहां आपको सनसेट इतना सुंदर नहीं नजर आता, और आप मिस करते रहे कि मैं कोई ऐसी जगह जाऊं, तो फिर आपका यहाँ जो कारोबार है वो आपका मिस होगा। कहने का मतलब कि वो बहन बता रही थी कि एक्सटर्नल हिसाब से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप वो अनुभव करते चलो और आपकी वो पॉजिटिव फीलिंग्स और स्थायी बनती जाए, या ऐसी आपकी स्थिति बने जो आपको कोई कारण से भी वो पॉजिटिव फीलिंग्स चेंज न हो सके, जरूर चेंज होती जाएंगी। तो फिर कहा कि मैं क्यों कहती हूं कि उसका उत्तर आपके पास है, क्योंकि एक ही हमने साधन देखा जिससे पॉजिटिव फीलिंग्स सदा के लिए बनी रहती है, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो आप लोग करते हो, मेडिटेशन की शिक्षा तो आप लोग देते हो, तो ये फिर आपका ही सब्जेक्ट हो जाता। तो आप यहाँ आए हैं, राजयोग का कुछ अनुभव किया है, तो हम तो चाहेंगे कि जो आपका यहाँ का अनुभव है वो आप अपने साथ लेकर जाएं, यहाँ छोड़ के मत जाएं, और आप साथ लेके जाएंगे परंतु साथ साथ आप उसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो कोई प्रकार का भी आप अपने जीवन के लिए चाहते हैं, तन के लिए, मन के लिए, संबंध के लिए, कारोबार के लिए, जरूर राजयोग द्वारा जो आपको आंतरिक प्राप्ति होंगी, ये मैं नहीं कहती हूं कि राजयोग के अभ्यास से आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेंगी, नहीं, मतलब दूसरा है, राजयोग के अभ्यास से जो आपकी इंटरनल स्थिति होंगी, आपकी अवस्था होंगी, उस शक्ति से जो कोई आज के संसार में बातें सामने आती है, आप उन सब बातों को बड़े आराम से फेस करके और आगे अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से, सुंदर तरह से आप आगे चल सकेंगे। मैं ये मानती हूं कि हर प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार से ही मानव अपना चॉइस बना के रखता। मानो कि हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे सामने दो चॉइसेस होते, ये करूं या ये करूं। यदि हमने अपने नॉलेज को कुछ एक्सपैंड किया होता तो हमको सिर्फ एक या दो बातें नजर नहीं आती है चॉइस की, हमको अनेक बातें नजर आती है चॉइस की, जिसमें हम देख सकते हैं कि आज मेरे सामने किस प्रकार का चॉइस है और उस अनुसार अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है जो मैं अपने लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए करूं। मैं क्यों ये बात कहती, क्योंकि आज का समय नाजुक है और आगे का समय और नाजुक होता जा रहा है। मुझे वो लिस्ट आपके सामने रखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से अधिक अच्छी तरह से जानते हो कि संसार में क्या क्या बातें हो रही, परंतु ऐसे सिचुएशन में स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास आपको इतनी क्लैरिटी देगा जो आप हर प्रकार की चीज को अच्छी तरह से देखकर, समझकर फिर आप राइट चॉइस कर सकेंगे अपने सुंदर भविष्य बनाने के लिए, सुंदर संसार बनाने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच सिस्टर जयंती। अभी आदरणीय आरसी रायना जी जयंती दीदी को फेलिसिटेट करेंगे। और जयंती दीदी से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का फेलिसिटेशन करेंगे मोमेंटोस दे करके। अभी हम दो मिनट के लिए परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं और शिल्पा बेन से मैं निवेदन करती हूँ परमात्मा की स्मृति में हम सभी को ले जाए गाइडेड कमेंट्री के द्वारा। शिल्पा बेन कल्याण महाराष्ट्र के वहाँ सेंटर में अपनी सेवाएं देते हैं, पिछले 25 इयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं कल्याण सेंटर में दे रहे हैं। आदरणीय शिल्पा बेन।
ओम शांति। चलिए दिल में अपने लिए बहुत प्यार भर के हम सभी मेडिटेशन की कुछ क्षणों के लिए प्रैक्टिस करेंगे। सभी का मन का विमान तैयार है, हम सब साथ में चलते हैं हल्के होकर के आकाश मार्ग से अपने ज्योतिबिंदु स्वरूप चमकते हुए सितारे प्यारे स्वरूप में स्थित होकर के निज धाम स्वीट साइलेंस होम लाल सुनहरा प्रकाशमय घर जहां प्रभु मिलन होता है, जैसे हम सूक्ष्म सितारा पवित्र शुद्ध आत्मा हैं, ऐसे ही हम सभी के प्यारे पिता आत्मिक पिता बिंदु स्वरूप प्रकाश के पुंज हैं। हम सभी के मन में उनके लिए अखुट प्यार भरा हुआ है। क्योंकि ये हमारे कल्याणकारी पिता हैं, बुद्धिदाता हैं, विश्व के परिवर्तक हैं, फोकस के रूप में उनका प्यार, उनकी शक्तियां हम सभी को वे प्रदान कर रहे हैं। वे हमारे शिव पिता हैं, शिव बाबा हैं। स्नेह से उनके सन्मुख आज हम संकल्पबद्ध होते हैं प्यारे पिता शिव बाबा, आपके विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में हम स्व परिवर्तन के कदम उठाते हुए हर प्रकार से सहयोगी रहेंगे। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपका और हमारा अविनाशी नाता है। ऐसी मधुर स्मृति को दिल में समाकर मन के विमान से नीचे आते हैं। अपने शरीर में ब्रुकुटी के बीच में एक शुद्ध पवित्र आत्मा, ईश्वर की प्रिय संतान,
बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा बहन का। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए मैं निवेदन करने जा रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शंकर शाह जी से वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करेंगे। आप पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जयप्रकाश यूनिवर्सिटी चापरा से यहाँ पधारे हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शंकर शाह जी।
ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय जयंती दीदी जी, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी लंदन, आदरणीय बीके अंबिका वाहन, नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क रिंग, डैश पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष रूप से विशिष्ट स्पीकर, आज चार दिवसीय कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र है। इस समापन सत्र के अवसर पर मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। किसी भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस, चाहे वह सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो या आध्यात्मिक हो, इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ, स्वागत गीत, स्वागत गान और स्वागत डांस से होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 12 सितंबर का इसका शुभारंभ हुआ और आज इसका समापन हो रहा है। इस समापन अवसर पर भी स्वागत गीत, स्वागत गान और स्वागत डांस हुआ। मैं समापन समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम इस सभागार में उपस्थित हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकों का, रिसर्च स्कॉलर का और इस स्पार्क विंग से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों का सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं। आभार विधि के अंतर्गत मैं चिंतन कर रहा था, मैं विचार कर रहा था कि इसका शुभारंभ मैं कहां से करूं। आप सभी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आध्यात्मिक पुरोधा प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने 1937 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। हिंदुस्तान की आजादी के 10 वर्ष पूर्व 1947 में इस देश को आजादी मिली, उसके पूर्व 10 वर्ष पूर्व प्रजापिता ब्रह्मा ने इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को शुभारंभ किया था। आज इस विश्वविद्यालय का इंडिया और इंडिया के बाहर विश्व के करीब 142 देशों के अंतर्गत 11,000 से ऊपर सेवा केंद्र स्थापित है। ऐसे महान आध्यात्मिक पुरोधा, ऐसे महान आध्यात्मिक हस्ती, मैं इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, स्पार्क विंग की ओर से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा 1967 में देहांत कर गए। उनके देहांत के उपरांत इस विश्वविद्यालय की बागडोर दादी प्रकाश मणि जी के कंधों पर आई। दादी प्रकाश मणि जी अपने मेहनत परिश्रम, अपने जोग बल तपस्या के द्वारा उसको विश्व के विभिन्न कोणों में फैलाने का काम किया। दादी प्रकाश मणि जी एक ऐसी हस्ती थी जो विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालय दर्जनों मानद उपाधियां से उन्हें विभूषित किया। मैं आज समापन के अवसर पर दादी प्रकाश मणि जी को अपनी ओर से, ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से, स्पार्क विंग की ओर से और इस सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस दादी प्रकाश मणि जी के देहांत के उपरांत इस विश्वविद्यालय की बागडोर दादी जानकी जी के कंधों पर आई। दादी जानकी जी जो वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, दादी जानकी जी 98 ईयर्स की हैं और आज भी वह किसी नौजवान से कम अपने मेहनत और परिश्रम नहीं करती है। आज भी वह विश्व भ्रमण में, विश्व के कोने कोने में भ्रमण कर ईश्वरीय विश्वविद्यालय को पैगाम को फैला रही है। आज मैं आप सबों की ओर से, अपनी ओर से, स्पार्क विंग की ओर से दादी जानकी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अंत में मैं स्पार्क विंग के चेयरपर्सन बीके रमेश भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके अंबिका बहन और स्पार्क विंग के सभी भाई बहनों का, जिन्होंने इस 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर आप सबों को आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति कराने का कार्य किया, इसलिए विशेष रूप से मैं स्पार्क विंग के सभी भाई बहनों को प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अंत में मैं इस विश्वविद्यालय के सभी मैनेजमेंट से जुड़े हुए, चाहे वो आवास निवास विभाग के लोग हों, ट्रांसपोर्ट विभाग के हों, किचन से जुड़े हुए लोग हों या छायाकार पत्रकार, विभिन्न प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति।
शंकर भाई का भी बहुत बहुत दिल से आभार। और अब हम सरोजनी बहन से बहुत सुंदर गीत सुनेंगे। गीत के बिना तो कार्यक्रम और कैसे पूरा हो सकता है। और परमात्मा की स्मृति में हम सभी बैठते हैं और सरोजनी बहन से हम बहुत सुंदर गीत सुनेंगे और उसके बाद सभी को यहाँ से टोली मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, लेते हुए जाएंगे, तो इसीलिए सभी बैठे रहेंगे। सरोजनी बहन,
कल्पना करे इतने फिक्र क्या हो गई, प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए, इतनी कृपा हुई के हम कृतकृत्य हो गए, प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए।
बहुत बहुत धन्यवाद रजनी बहन जी का भी, मंच पर विराजित सभी मेहमानों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी दो लाइन में टोली मिले, प्रसाद मिलेगा, तो जिनको जहां से भी लेना है ले सकते हैं, बहनें बैठेंगी।